आगे देखिए सबक भाई, वमन शरा शै अन अला अयर हन शै अन अवयुअती कफीलन बी आईनी ही मामिन समनी ही व अबा सहस्ते सानन वल कियासु अल्ला यजूजा लि अन्नहु सफकतुन फी सफकतिन वजहुल इस्तेहसानी अन्नहु शर्तुन मुलाइमुन लि अन्नल कफालत वर्रहना للاستيساق والاستيساق ملائم للوجوب وإنما قال بعينهما لأنه لو لم يكن الرهن أو الكفيل معينا يفسد البيع. رهن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ایک بڑی مشکل بحث گزری. مصنف نے آپ کو بتلایا कि सोने और चांदी को भी बतौर रहन के रखवाना सही और इसी तरह तमाम मकीलात और मौजूनात को भी रहन रखवाना सही है, क्योंकि इन रहन के जरिए मकसद होता है वसूली अपने देन की, और मकीलात और मौजूनात को भी बेचकर अपने देन को वसूल किया जा सकता है. लेकिन इसमें फिर तफसील इन्होंने बतलाई थी कि अगर ये मकीलात और मौजूनात को इन्हीं की जिंस के बदले रखा जाए और फिर रहन हलाक हो जाए, तो इस सूरत में जो है वो रहन हलाक होगा अपने ही मिसल बदले में बएतबार कदर के. यानी अगर कैली है तो उतना ही कैल देख लेंगे, और अगर वजनी है तो उतना ही वजन देख लेंगे. यानी कीमत का एतबार नहीं है बल्कि मिकदार का एतबार है, बैतबार कैल के या बैतबार वजन के. वला इबरत लिल जौदती, और इन्होंने आपको बतलाया था कि जौदत यानी उमदगी का कोई एतबार नहीं. जौदत कहते हैं किसी चीज की यानी उमदगी के कितनी उमदा है. यूं कहें क्वालिटी भाई, जौदत किसको कहते हैं, क्वालिटी को. तो कहते हैं वला इबरत लिल जौदती, क्वालिटी का कोई एतबार नहीं है कि एक आला था, देन वाला आला है और रहन वाला अदना है. तो कहते हैं नहीं भाई, क्वालिटी को नहीं देखेंगे बल्कि मिकदार को देख लेंगे, चाहे क्वालिटी में फर्क ही क्यों ना हो. देन आला क्वालिटी वाला था, रहन अदना क्वालिटी वाला है, लेकिन फिर भी बराबरी की जाएगी. किस एतबार से? कदर के एतबार से. अगर कैली है तो कैल के एतबार से, और वजनी है तो वजन के एतबार से. और फिर शरा में इन्होंने आपको बतलाया कि यह मजहब है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला का, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कीमत को देखा जाएगा, कीमत को देखा जाएगा. और फिर इख्तिलाफ जाहिर होता है साहिबैन और इमाम साहिब का उस सूरत में जबकि देन कम दर्जे का हो. जब देन कम हो तो फिर कम कीमत वाला हो तो उस वक्त इख्तिलाफ जाहिर होगा. तो इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ उस वक्त जाहिर होता है जब देन की कीमत कम दर्जे की हो रहन के मुकाबले में. अगर मसलन देखो, एक शख्स ने दूसरे के पास चांदी का बर्तन रखवाया, उस बर्तन के का वजन भी 10 दिरहम और कीमत भी 10 दिरहम, और उसके बदले देन लिया वो भी 10 दिरहम है. तो यहां पर देखो, उस रहन का वजन भी 10 दिरहम और कीमत भी 10 दिरहम. तो अगर ये रहन इसके पास हलाक हो गया तो देन भी कितना था? 10 दिरहम, उसके बदले ये हलाक हुआ. तो यहां पर इख्तिलाफ जाहिर ही नहीं होता साहिबैन का और इमाम साहिब का. इमाम साहिब के नजदीक भी रहन हलाक हुआ कितने के बदले? 10 दिरहम के बदले, क्योंकि इसका वजन भी 10 दिरहम था और वो भी देन भी कितना है? 10 दिरहम. साहिबैन भी फरमाते हैं कि यहां पर जो रहन हलाक हुआ है वो देन के बदले है, क्योंकि रहन की कीमत 10 दिरहम है और देन भी कितना है? 10 दिरहम. तो देन साकित हो गया. और अगर रहन की कीमत ज्यादा हो, कीमत ज्यादा हो, मसलन एक शख्स ने 10 दिरहम देन लिया है और 10 दिरहम वजन वाला एक बर्तन बतौर रहन के रखवाया, लेकिन उसकी कीमत 15 दिरहम है, कीमत 15 दिरहम, तो इस सूरत में भी देन कितना? 10 दिरहम. बर्तन का वजन कितना? 10 दिरहम. कीमत कितनी? 15. तो वजन तो 10 दिरहम है और देन भी 10 दिरहम है. इमाम साहब फरमाते हैं अगर ये रहन इसके पास हलाक हो गया तो इसका और देन का वजन बराबर है, लिहाजा ये देन क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा. जबकि कीमत तो इसकी 15 दिरहम है. तो साहिबैन भी फरमाते हैं कि जो देन है वो 10 दिरहम है और रहन कितना है? 15 दिरहम,
हैं।
तो इसमें से 5 दिरहम तो अमानत हैं, वो तो वैसे ही जाया हो गए, और 10 10 के बदले हो गए, तो देन क्या हो गया? साकित। तो इस सूरत में भी मालूम हुआ इमाम साहब और साहिबैन दोनों के नजदीक देन साकित हो जाएगा, इख्तिलाफ जाहिर नहीं हुआ, इख्तिलाफ जाहिर नहीं हुआ। हां, इख्तिलाफ जाहिर उस वक्त होगा जिस वक्त रहन की कीमत कम दर्जे की होगी। रहन की कीमत
कम दर्जे,
देखो ना, एक सूरत हमने कर ली जब रहन की कीमत बराबर थी, एक सूरत हमने वो कर ली जिसमें रहन की कीमत ज्यादा थी, तो जायद क्या था? वो अमानत था। अब इख्तिलाफ उस सूरत में जाहिर होता है जब रहन की कीमत कम हो देन से। मसलन रहन जो रखवाया, देन है 10 दिरहम, और रहन जो बर्तन रखवाया उसका वजन भी 10 दिरहम लेकिन कीमत उसकी 8 दिरहम है। कितनी है कीमत? 8 दिरहम। तो इमाम साहब के नजदीक वजन को देखा जाएगा, वजन रहन का भी 10 दिरहम और देन भी 10 दिरहम, तो दोनों बराबर हो गए। देन रहन हलाक हुआ तो देन क्या हो गया? साकित हो गया। जबकि साहिबैन तो फरमाते हैं कीमत को देखा जाएगा, और कीमत और रहन की कितनी है? 8 दिरहम, 8 दिरहम, और देन कितना है? 10 दिरहम। इमाम साहब ने क्या फरमाया कि उसने वसूली कर ली, क्या कर ली? क्योंकि 10 दिरहम का वजन बर्तन हलाक हुआ है और देन भी कितना है? 10 दिरहम। साहिबैन फरमाते हैं नहीं, यहां वजन के एतबार से भी वसूली के कायल हम नहीं हो सकते और कीमत के एतबार से भी वसूली के कायल नहीं हो सकते। तवज्जो है, देन कितना है? 10 दिरहम, बर्तन का वजन कितना? 10 दिरहम, लेकिन कीमत कितनी है? 8 दिरहम, और यह हलाक हो गया उसके पास। इमाम साहब के नजदीक तिल का भी तिल का दोनों एक दूसरे के बदले हो गए, देन क्या हो जाएगा? उसके बदले साकित हो जाएगा, गोया उसने वसूली कर ली क्योंकि दोनों का वजन 10-10 दिरहम है। सूरत समझ में आ गई। साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ना यहां वसूली वजन के एतबार से हम उसके कायल हो सकते हैं और न कीमत के एतबार से उसके कायल हो सकते हैं। वजन के एतबार से वसूली के कायल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उस सूरत में मुर्तहिन का नुकसान लाजिम आता है। इसने देन कितना दिया है? 10 दिरहम, और जो बर्तन इसके पास रखवाया गया, ठीक है, उसका वजन तो 10 दिरहम है लेकिन कीमत तो उसकी कितनी है? 8 दिरहम। तो इस सूरत में अगर हम कहें कि मुर्तहिन ने अपना देन वसूल कर लिया तो उस बेचारे का तो नुकसान हो गया, उस बेचारे का नुकसान हो गया। और कीमत के एतबार से भी हम ये नहीं कह सकते कि मुर्तहिन ने अपना देन वसूल कर लिया है क्योंकि कीमत तो रहन की कितनी थी? 8 दिरहम, और देन कितना था? 10 दिरहम। तो अगर ये कह दें कि ये 8 10 के बदले हो गए, फिर तो रिबा लाजिम आया भाई, हालांकि दोनों में बराबरी जरूरी थी। सूरत समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे? साहिबैन फरमाते हैं कि वो जो रहन इसके पास हलाक हुआ उसकी कीमत कितनी थी? 8 दिरहम। उस 8 दिरहम की कोई खिलाफुल जिन्स चीज खरीद ली जाएगी, मसलन सोना खरीद लिया 8 दिरहम का, और फिर वो सोना जो है मुर्तहिन के पास बतौर रहन के हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 8 दिरहम का सोना जो है वो खरीद कर इसके पास बतौर रहन के ये अपने पास रख लेगा। तो या तो इसके बाद बतौर रहन के रहे या मालिक बन जाए, बात एक ही है भाई। या तो सोना देगा, वो कितने का है? 8 दिरहम का, और कितना देन ले लेगा? 10 दिरहम। तो देखा गोया 2 दिरहम जायद वसूल हो गए। या अगर ये मालिक बन जाता है तो भी इसने 8 दिरहम क्या कर लिए? वसूल कर लिए, और कितने रह गए? 2 दिरहम रह गए। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद इबारत पर एक बड़ा पेचीदा एतराज जिक्र किया था साहिब शरह विकाया ने, और उन्होंने कहा था कि ऊपर मतन में जो इबारत आई फहुल कुहू बिमिसलिही कदरम मिन दैनिही, ये मिन जो है ये मिन कौन सा है? इबारत में क्या बतलाया कि अगर रहन हलाक हो जाए तो वो हलाक होगा बिमिसलिही, अपने ही मिसल के, अपने बराबर के बदले ही, कदरन बैतबार मिकदार के, बैतबार मिकदार, अपने ही बराबर मिकदार के बदले हलाक होगा। मीन देन ही, किस में से? देन में से। तो अब ये मीन कौन सा है? ये कहते हैं या तो ये मीन तबईजिया बनेगा अगर रहन अगर देन ज्यादा हो। तवज्जो है, फिर समझ लो इस इबारत को। क्या फरमाया कि अगर रहन हलाक हो जाए तो रहन अपने ही बराबर मिकदार के बदले हलाक हुआ। तवज्जो है, रहन बिमिसली ही कदरन, अपने ही बराबर मिकदार के बदले। तवज्जो नहीं है, इस जुबान से दोहराओ, रहन हलाक हुआ अपने ही बराबर मिकदार के बदले। अपने ही बराबर
मिकदार
के बदले हलाक हुआ है। मीन दैन ही किस में से, दैन में से। अब ये मीन कौन सा है? कहते हैं ये मीन तबईजिया बनेगा अगर दैन की मिकदार ज्यादा हो। क्या हो? दैन की मिकदार ज्यादा हो, इसलिए क्योंकि मीन तबईजिया उस सूरत में आता है जब कुछ बाकी भी बच जाए। मसलन वो जो रहन हलाक हुआ वो था 10 दिरहम का और दैन कितना था? 15 दिरहम था। तो देखो उसके पास 10 दिरहम का रहन हलाक हो गया और इन्होंने क्या जाब्ता बताया कि रहन हलाक होगा अपने ही बराबर मिकदार के बदले, किसमें से? देन में से। तो इसके 10 हलाक हुआ, इसके बराबर भी क्या है? 10 ही है। तो ये 10 के बदले ही हलाक हुआ, मीना देन किस में से? देन में से। तो देन तो है 15, तो 15 में से 10 कट गए, कितने रह गए? 5। मालूम हुआ ये मीन इस सूरत में तवईजिया बनेगा जबकि देन ज्यादा हो, क्योंकि मीन तवईजिया में कुछ बाकी बचना चाहिए। मीन देनी ही देन में से, जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि अखज तुम मीना दराहिम, मैंने ले लिए किस में से? दराहिम में से। मालूम हुआ सारे नहीं लिए, कुछ बाकी भी बच गए हैं। तो ये मीन तबईजिया है जब क्या हो? देन की मिकदार ज्यादा। और अगर देन जो है वो रहन के बराबर हो तो फिर ये मीन बयानिया बनेगा जो बयान के लिए आता है। फिर वही इबारत लगाओ, देन भी कितना? 10 दिरहम, रहन भी कितना? 10 दिरहम। तो ये रहन इसके पास हलाक हो गया, तो फहुल कुहु भी मिस लिही कदरन, तो रहन हलाक हुआ अपने ही बराबर मिकदार के बदले में। और अपने ही बराबर मिकदार देन में से कुछ बाकी बचता है? नहीं। तो मालूम है अपने ही बराबर मिकदार वो देन ही तो है, वो देन ही तो है, कोई और चीज तो नहीं। मालूम हुआ मीन देन ही में मीन बयानिया है। मीन क्या है? मीन बयानिया है। बिमिसली ही मिकदार, अपने ही बराबर मिकदार वो क्या है? वो देन ही तो है। तो ये मीन के जरिए उसी बिमिसली ही को बयान कर दिया गया। सूरत समझ में आ गई कि वो हलाक हुआ अपने ही बराबर मिकदार के बदले, यानी देन के बदले, क्योंकि देन भी खत्म हो गया। सूरत समझ में आ गई। तो मालूम हुआ जब देन बराबर हो रहन के तो इस सूरत में मीन बयानिया बनेगा, मीन बयान के लिए आएगा। और अगर देन जो है वो थोड़ा है रहन के मुकाबले में, कम है उसकी मिकदार, मसलन रहन है 15 दिरहम का और देन है 10 दिरहम का, तो रहन इसके पास हलाक हो गया। तो इस सूरत में याद रखो ये जो मीन है ना, ये तबईजिया आप बना सकते हैं ना मीन बयानिया बना सकते हैं, क्योंकि मीन तबईजिया के अंदर कुछ देन बचना चाहिए और मीन बयानिया में देन को रहन के बराबर होना चाहिए, और यहां पर तो देन थोड़ा है। तो इबारत का अगर आप तर्जमा करेंगे तबईजिया तो बन नहीं सकता, तबईजिया में तो देन कुछ बच जाता है, और ये बयान भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मीन को बयान वाला बनाए तो इबारत का तर्जमा यूं हो जाएगा कि रहन हलाक हो गया बिमिसली ही कदरन, अपने ही बराबर के बदले में, यानी के देन के बदले में। यानी मालूम हुआ देन भी 15 है, हालांकि देन तो 15 नहीं है, वो तो कितना है? 10 है भाई। सूरत समझ में आ गई। तो मालूम हुआ जब देन रहन के मुकाबले में अकल हो बैतबार मिकदार के, तो उस सूरत में या इबारत में जो मीन आया इसको न मीन तबईजिया बना सकते हो और न मीन बयानिया बना सकते हो। सूरत समझ में आ गई। तो मालूम हुआ ये जो इबारत है, इस इबारत में तीनों सूरतें दाखिल नहीं होती। तीनों सूरतें दाखिल नहीं होती। तीन सूरतें कौन सी हैं? देन रहन के बराबर होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा वाला की सूरत बनाओ तो मीन को तबईजिया मानना पड़ता है, बराबर वाली सूरत बनाओ तो मीन को बयानिया मानना पड़ता है, और अगर देन कम है तो न मीन तबईजिया है और न मीन बयानिया है। तो फिर मालूम हुआ इबारत में खलल है, ये सारी सूरतों को शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। मीन के दोनों माना हम ले भी नहीं सकते, तबईज और बयान वाला, क्योंकि अमूम में मुश्तरक जायज नहीं। एक ही लफ्ज के कई मानी आते हों और आप एक ही जगह पर उसके सारे माने मुराद ले लें, ये नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही माना मुराद होगा। अगर ये मीन तबईजिया है तो बयानिया नहीं, और अगर बयानिया है तो तबईजिया नहीं। तो शारह ने फिर आपको जवाब भी दिया था कि ये मीन तबईजिया है और ये सिर्फ मतन में वो सूरत बयान हो रही है जब देन ज्यादा हो। جب دین کیا ہو زیادہ، اور باقی صورتیں کہتے ہیں وہ آپ خود ہی اس سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہاں مصنف کا مقصد تینوں صورتیں بیان کرنا نہیں، مصنف صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر رہن ہلاک ہو جائے تو اس میں وزن کا اعتبار کرنا ہے، قیمت کا اعتبار نہیں
نہیں نہیں
کرنا، اگر وزن اس کا تھوڑا تھا تو دین میں سے اتنی ہی کٹوتی ہو جائے گی، اور باقی صورتوں کو اسی پر قیاس کر لو، باقی صورتوں کو اسے
اسی
اگر
پر
برابر ہوا وزن تو پھر وہ دین جو ہے رہن کے بدلے ساقط ہو جائے گا۔ تو متن میں انہوں نے صرف جو ہے وہ صورت ذکر کی جب دین زیادہ ہو، اگر دین برابر ہو یا رہن زیادہ ہو وہ صورت ذکر
نہیں
نہیں،
نہیں
کیونکہ اگر رہن برابر ہے دین کے تو پھر تو مقدار دونوں برابر سرابر ہو گیا معاملہ، اس کا رہن گیا تو اس سے دین کیا ہو گیا، ساقط
زائد
ہو
ہو
گیا، اور اگر رہن زیادہ ہے تو زائد رہن کیا ہوتا ہے، امانت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
جی
تو حاصل کلام یہ کہ متن میں جو مین آیا وہ تبعیضیہ ہے، اور وہاں صرف وہ صورت ذکر کی جب دین زیادہ تھا، اور باقی دو صورتوں کو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب رہن ہلاک ہو جائے کس کے اندر، مکیلات اور موزونات میں، اور
موزونات
اسی کی جنس کے بدلے ہو، یعنی دین بھی وہی ہے رہن بھی وہی ہے، تو وہاں پر پھر آپ مقدار کا اعتبار کرنا، قیمت کا اعتبار نہ کرنا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟
میں
اب آگے دیکھیے بھائی سبق۔ ومن شرا شیئن علی ان یرہن شیئن او یعطی کفیلا بعینہ ما من ثمنہ و ابا صح استحسانا والقیاس ان لا یجوز لانہ صفقۃ فی صفقۃ وجہ الاستحسان انہ شرط ملائم لان الکفالۃ والرہن للاستیساق والاستیساق ملائم للوجوب وَإِنَّمَا قَالَ بِعَيْنِهِ مَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ أَوِ الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا يَفْسُدُ الْبَيْعُ۔ رہن کے مسائل چل رہے ہیں بھائی، صورت مسئلہ یہ جو آگے ذکر ہو رہی ہے کہ بائے اور مشتری کے درمیان بیع کا معاملہ ہوا، اور بائے نے بیع کے اندر شرط لگا دی کہ میں تمہیں اس شرط پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں کہ تم اپنی فلاں معین چیز یعنی فلاں گاڑی میرے پاس بطور رہن کے رکھواؤ، یا فلاں معین شخص مثلا زید جو اس مجلس میں موجود ہے کہ یہ آدمی جو ہے آپ کی ضمانت دے دے، کیونکہ مشتری نے کہا تھا کہ میں آپ کو پیسے ایک مہینے بعد دوں گا، یعنی فوری ادائیگی نہیں کروں گا، کچھ مدت کے بعد ادائیگی کروں گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشتری نے کیا کہا، میں ایسی بیع چاہتا ہوں کہ میں فی الحال میرے پاس رقم نہیں ہے، میں ایک ماہ بعد یا اتنی مدت کے بعد آپ کو پیسوں کی ادائیگی کروں گا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بیع کی اس کے ساتھ، لیکن بیع کے اندر شرط لگا دی کہ چونکہ تم نے میرے سمن دینے ہیں، سمن تمہارے ذمہ واجب ہوں گے اور تم نے ادائیگی کرنی ہے ایک مہینے کے بعد، تو تم پر ایک ماہ تک میرا یہ دین رہے گا، تو لہذا یہ اس شرط پر یہ تمہیں چیز میں بیچتا ہوں کہ تم کوئی اپنی فلاں معین چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھوا دو اس دین کے بدلے، وہ جو سمن کا دین آئے گا آپ پر، یا یہ جو زید ہے معین آدمی اس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کے بارے میں ضمانت دے دے کہ آپ بعد میں میرے پیسے دے دیں گے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہونی چاہیے، فاسد ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ یہاں عقد بیع ہے، اور بیع کے اندر وہ عقد رہن یا عقد کفالت کی شرط لگا رہا ہے، تو ایک عقد کے اندر دوسرے عقد آ رہا ہے، تو صفقۃن فی صفقۃن، صفقہ کہتے ہیں عقد کو، عقد کے اندر عقد کی شرط لگا رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، ایک عقد میں دوسرے عقد سے روکا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نیز اس لیے ایک تو وجہ یہ ہو گئی اس کے جائز نہیں، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کی شرط لگائی جا رہی ہے، تو ایک عقد کے اندر دوسرا عقد آ جائے گا، یعنی عقد بیع کے اندر عقد رہن آ جائے گا اس کے ضمن میں، یا عقد بیع کے ضمن میں عقد کفالت آ جائے گا، کفالت ضمانت، بھائی کوئی کسی کی ضمانت دے دے۔ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو شرط لگا رہا ہے معین چیز کے رہن کی یا معین کفیل کی، یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے اور نیز اس میں بائے کا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے، بیع کے اندر اگر شرط لگائی جائے تو بعض صورتوں میں بیع بھی صحیح ہوتی ہے اور شرط بھی صحیح ہوتی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر شرط لگائی جائے بیع کے اندر تو شرط بھی فاسد اور بیع بھی فاسد، اور بعض صورتوں کے اندر بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع تو صحیح ہوتی ہے لیکن شرط فاسد یعنی لغو ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی قسم کی شرطیں ہو گئیں؟ تین قسم کی۔ بعض اوقات بیع کے اندر کوئی شرط لگائی جائے تو وہ بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح، اور بعض اوقات بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد، اور بعض اوقات بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع تو صحیح اور شرط فاسد ہوتی ہے، یعنی وہ لغو ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے مطابق ہو، عقد بیع کیا، ایسی شرط لگا دی کہ عقد بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے، عقد بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس صورت میں بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح، کیونکہ یہ مقتضی عقد کے مطابق شرط ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو اپنی چیز بیچتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے کہ یہ چیز تمہیں میں اس شرط پر بیچوں گا کہ آپ اس کے مالک بن جاؤ گے۔ بھائی بیع میں ہوتا ہی یہ ہے کہ مشتری کیا ہوتا ہے، بیع کرتے ہی مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، یہ تو خود عقد یہی تقاضا کرتا ہے، تو یہ اس نے ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے مطابق ہے، یعنی اس میں کوئی بیع کے خلاف بات اس نے نہیں کی۔ بھائی تو شرط بھی صحیح اور بیع بھی صحیح ہو گئی، بیع کرتے ہی وہ مالک بن جائے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات شرط لگائی جاتی ہے، دیکھنے میں تو وہ شرط ہوتی ہے لیکن غور کیا جائے تو دراصل وہ مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی غلام یا باندی خریدتا ہے اور اس شرط پر خریدتا ہے کہ اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے، میں اس شرط پر یہ غلام یا باندی خریدتا ہوں کہ اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے۔ دیکھو اب بظاہر تو وہ شرط لگا رہا ہے بیع کے اندر، لیکن غور کیا جائے تو یہ شرط نہیں ہے، وہ دراصل مبیعے کا وصف بیان کر رہا ہے کہ مجھے ایسا غلام یا ایسی باندی چاہیے جس کو کھانا بنانا آتا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بات بالکل، یہ بھی کوئی عقد کے خلاف نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق خریدتے ہیں، بھائی معلوم ہوا اس شخص کو بھی کھانا بنانے کے لیے غلام یا باندی کی ضرورت ہے، تو دیکھنے میں تو یہ شرط ہے لیکن حقیقت میں تو یہ کیا بیان ہو رہا ہے، مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے، لہذا یہ بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے۔ بھائی تو یہ پہلی صورت تھی جس میں شرط لگائی، ایک تو وہ شرط مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بظاہر شرط ہوگی لیکن دیکھنے میں مبیعے کا وصف ہوگا، تو اس صورت میں بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح۔ جبکہ بعض صورتوں میں بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد، یہ اس وقت ہوگا جب ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، عقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا لیکن اس کے اندر شرط لگا دی، اور نیز اس کے اندر مشتری بائے یا مبیعے کا فائدہ ہو۔ کس کا فائدہ ہو؟ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، عقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا، اور اس میں بائے کا یا مشتری کا یا مبیعے کا فائدہ ہو۔ بائے کا فائدہ ہو، مثلا بائے نے کسی کو اپنی گاڑی فروخت کی لیکن شرط یہ لگا دی کہ میں تمہیں ایک ہفتے بعد دوں گا، یا کسی نے کسی کو مکان فروخت کر کیا لیکن شرط لگا دی کہ میں دو مہینے بعد تمہارے حوالے کروں گا۔ تو دیکھو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، عقد بیع تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ بیع ہوتے ہی مشتری مالک بن گیا، لہذا اب مبیعہ فوراً اس کے حوالے کرو، تو یہ شرط کیا ہوئی؟ مقتضی عقد کے خلاف ہوئی، اور نہیں جس میں بائے کا فائدہ ہے، معلوم ہو وہ چیز بیچنے کے بعد بھی اس سے ایک ہفتہ یا دو مہینے تک نفع اٹھانا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے بعد گاڑی آپ کے حوالے کروں گا، معلوم ہو وہ ایک ہفتہ مزید اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، حالانکہ چیز کا مالک تو مشتری بن چکا ہے، یا گھر اس نے فروخت کیا ہے اور کہتا ہے میں دو ماہ بعد تمہارے حوالے کروں گا، معلوم ہوا कि बाय जो है दो माह मजीद उस घर से फायदा उठाना चाहता है, तो ये ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है और जिसमें बाय का नफा है, तो शर्त भी फासिद और बे भी फासिद भाई, ये बे फासिद हो जाएगी और इसको तोड़ना जरूरी है भाई। बात समझ में आ गई, बे फासिद हो जाए तो उसको तोड़ना जरूरी होता है, वरना गुनाहगार होंगे करने वाले, उसको तोड़े और नए सिरे से सही तरीके से बे करें उस चीज की। या दूसरी शर्त, मसलन ऐसी शर्त लगाई जिसमें मुश्तरी का फायदा है, मुश्तरी ने किसी से गाड़ी खरीदी लेकिन शर्त लगा दी साथ कि मैं इस शर्त पर गाड़ी खरीदता हूं कि आप मुझे साथ 5 लाख रुपए बतौर कर्ज के भी देंगे। अब देखो ये ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है, अकद बया तो ये तकाजा नहीं करता कि बाय क्या करे 5 लाख रुपए मुश्तरी को कर्जा दे, और नीज इस शर्त में मुश्तरी का देखो फायदा है, बे के साथ साथ वो 5 लाख रुपए कर्जा लेकर फायदा उठाना चाहता है। ऐसी शर्त लगाना जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ हो और उसमें बाय या मुश्तरी का फायदा हो, तो इस सूरत में बे भी फासिद और शर्त भी फासिद। तीसरी सूरत इसी के अंदर यह है कि ऐसी शर्त लगाई जिसमें मबीए का फायदा हो, ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है और जिसमें मबीए का फायदा हो। भाई मबीए का फायदा कैसे होगा, याद रखिए ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब मबीहा गुलाम या बांदी हो। मसलन बाय ने किसी को गुलाम या बांदी फरोख्त की और इस शर्त पर कि मैं इस शर्त पर ये आपको फरोख्त करता हूं कि आप इसको मुदब्बर बनाओगे, इसको मुदब्बर बनाओगे, या बांदी फरोख्त की इस शर्त पर कि आप इसको उम्मे वलद बनाओगे, और मुदब्बर तो मालिक के मरने के बाद आजाद होता है और इसी तरह उम्मे वलद आका के मरने के बाद आजाद हो जाती है। तो देखो इस शर्त के अंदर मबीए का फायदा है कि मालिक के मरने के बाद वो क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो अकद बया तो ये तकाजा नहीं करता भाई कि उसमें ये शर्त लगाई जाए, तो ये ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है और जिसमें मबीए का भी फायदा है, तो इस सूरत में बया भी फासिद और शर्त भी फासिद हो गई। बाकी चीजों के अंदर अगर गुलाम या बांदी के अलावा कोई और चीज खरीदी या बेची तो उसमें फिर मबीए के फायदे वाली सूरत नहीं बनती, वहां सिर्फ मुश्तरी का फायदा हो सकता है किसी शर्त में या बाय का फायदा हो सकता है, मुश्तरी का फायदा हो या बाय का फायदा हो तो फिर शर्त भी फासिद होगी और बे भी फासिद। तीसरी सूरत यह थी कि बे के अंदर शर्त लगाई, शर्त तो फासिद लेकिन बे सही, यानी ऐसी शर्त लगाना जिसका आकद तकाजा न करे, मुक्तज़ा आकद के खिलाफ हो और उसमें किसी का फायदा भी ना हो, उसमें किसी का फायदा भी ना हो। मसलन किसी ने किसी को गाड़ी फरोख्त की और साथ बाय ने यह शर्त लगा दी कि मैं इस शर्त पर यह गाड़ी फरोख्त करता हूं कि ये गाड़ी आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और को इस्तेमाल के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये आप ही के लायक है, ये इतनी बेहतरीन गाड़ी है कि ये आप ही के लायक है। अब देखो बाय ने ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है भाई, मुश्तरी की मर्जी है खुद इस्तेमाल करे या किसी और को दे इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसमें पाबंद किया जा रहा है कि मुश्तरी खुद इस्तेमाल करेगा, तो यह ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है और नीज इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। आप कहेंगे मुश्तरी का फायदा है, वो खुद इस्तेमाल करेगा, भाई मुश्तरी तो बे करते ही मबीए का मालिक बन गया, उसकी मर्जी है सारी जिंदगी खुद ही इस्तेमाल करे, कोई नया फायदा तो उसको हासिल नहीं हो रहा, वो तो मालिक बन गया, उसकी तो मर्जी है भाई। तो ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा आकद के तो खिलाफ है और उसमें किसी बाय या मुश्तरी का फायदा नहीं है, तो शर्त क्या हो जाएगी, लग्व और बे सही हो जाएगी, शर्त लग्व हो गई यानी उसका कोई एतबार नहीं है, मुश्तरी की मर्जी है खुद इस्तेमाल करे या किसी और को दे। या किसी ने किसी को खाने की कोई चीज फरोख्त की और शर्त लगा दी कि ये खाने की चीज मैं आपको इस शर्त पर बेचता हूं कि आप ही इसको खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा, ये आप ही के लायक है, तो ये ऐसी शर्त लगा दी जिसका अकदे बया तकाजा नहीं करती। तो ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है और इसमें किसी का फायदा भी नहीं, क्योंकि मुश्तरी तो मालिक बन जाएगा, उसकी मर्जी है खुद खाए या किसी और को खिलाए, तो बे तो सही हो जाएगी लेकिन शर्त फासिद। तो हासिल कलाम यह हुआ कि बै के अंदर शर्त लगाई जाए तो तीन सूरतें बनती हैं, बाज़ औक़ात बै भी सही शर्त भी सही, बाज़ औक़ात बै फासिद और शर्त भी फासिद, और बाज़ औक़ात बै सही होती है और शर्त फासिद होती है। पहली सूरत बै भी सही हो और शर्त भी सही हो कि ऐसी शर्त लगाना जो मुक्तज़ा अकद के मुआफिक हो, मुक्तज़ा अकद के मुताबिक हो, या शर्त जिक्र करना और देखने में तो वो शर्त हो लेकिन हकीकत में वो मबीए का वसफ बयान हो रहा हो। दूसरी सूरत की ऐसी शर्त लगाई कि बै भी फासिद और शर्त भी फासिद, वो ऐसी शर्त है जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ हो और उसमें बाय या मुश्तरी या मबिया इनमें से किसी एक का फायदा हो। और तीसरी सूरत कि ऐसी शर्त लगाना कि बै तो सही हो लेकिन शर्त फासिद हो यानी लगव हो जाए, वो ऐसी शर्त लगाना जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ हो और उसमें न बाय का फायदा हो और ना मुश्तरी वगैरह किसी का फायदा ना हो। बात समझ में आ गई। तो अब आओ किताब के मसले पर। यहां पर बाय ने एक चीज दूसरे को बेची है और उसने कहा है मैं एक महीने बाद समन दूंगा, तो बाय ने बै में ही शर्त लगा दी कि मैं इस शर्त पर यह चीज आपको फरोख्त करता हूं कि आप अपनी फलां गाड़ी मुअय्यन गाड़ी जो है वो मेरे पास बतौर रहन के रखवा देंगे जब तक आप ये समन वाला देन अदा नहीं करते, या आपके इस देन की जमानत और कफालत जो है ये जो जैद है मुअय्यन आदमी ये आपकी जमानत दे दे। ये शर्त लगा दी बै के अंदर भाई। तो इस सूरत में याद रखिए कियास तो ये तकाजा करता है कि ये शर्त भी फासिद और बै भी फासिद होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ऐसी शर्त लगाई है जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है। आप दिन रात चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या आपकी इन बुयूहात में बै के अंदर रहन लाजमी होता है? क्या यह बै तकाजा करती है कि उसके साथ रहन भी होना चाहिए? नहीं, बै तकाजा नहीं करती रहन की। या क्या बै तकाजा करती है कि इसके साथ कफालत यानी जमानत भी किसी की होनी चाहिए? नहीं भाई, बै इस बात का तकाजा नहीं करती। तो लिहाजा ये ऐसी शर्त लगा दी, रहन और कफालत वाली शर्त ऐसी है जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है, अकदे बै इस रहन या कफालत का तकाजा नहीं करती, और नीज इसमें बाय का फायदा है, बाय का फायदा है क्योंकि रहन होगा तो पैसों की वसूली पक्की हो गई, जमानत होगी कफालत होगी तो पैसों की वसूली पक्की हो गई मजबूत हो गई। तो देखो ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है और जिसमें बाय का फायदा है, और ऐसी शर्त लगाई जाए तो शर्त भी फासिद और बै भी फासिद। लेकिन आपको बताएंगे कि कियास तो यही तकाजा करता है लेकिन इस्तेहसानन ये बै सही है, कियास तो यही तकाजा करता है ये बै भी फासिद और शर्त भी फासिद लेकिन इस्तेहसानन ये बै सही है जायज है। एक तो ये वजह मैंने जिक्र कर दी, कियास क्यों तकाजा करता है ये बै फासिद है क्योंकि ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है और इसमें बाय का फायदा है, और दूसरी वजह यह कि यहां सफके में सफका लाजिम आ रहा है, एक अकद के अंदर दूसरा अकद लाजिम आ रहा है। एक तो है अकद बै भी किसका नाम? अकद का नाम। रहन भी किसका नाम? अकद का नाम। कफालत भी किसका नाम? अकद का नाम। तो एक अकद बै है और उसके अंदर दूसरे अकद यानी रहन या कफालत की शर्त लगा दी तो अकद के अंदर अकद आ गया, हालांकि अकद के अंदर अकद से हमें मना किया गया है। बात समझ में आ गई। तो ये वजह थी कि कियासन जायज नहीं कि अकद के अंदर अकद लाजिम आता है या ऐसी शर्त है जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है और उसमें बाय का फायदा, लेकिन इस्तेहसानन ये अकद सही है, ये अकद सही है। क्यों सही है? कहते हैं इसलिए क्योंकि जो रहन और कफालत हैं ये इत्मीनान और मजबूती के लिए होते हैं। आपका किसी पर देन है तो आपका इत्मीनान किस सूरत में होगा? कि वो कोई चीज आपके पास रहन रखवा दे। या आपका किसी पर देन है तो आपको इत्मीनान तभी होगा जब वो किसी की जमानत दे दे, कोई मुअतमद काबिल एतमाद आदमी जमानत दे दे कि ये शख्स आपके पैसे दे देगा लेकर भागेगा नहीं। तो अब देखो आपका देन महफूज हो गया, मालूम हुआ अब वसूली जरूर हो जाएगी क्योंकि उसने अपना रहन कोई चीज रखवाई है या किसी ने जमानत दी है। توجہ ہے بیان کر رہا ہوں میں استحسان کو کہ استحسانن یہ بیع جائز ہے. کہتے ہیں استحسان کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو رہن اور کفالت ہوتی ہے یہ اطمینان اور مضبوطی کے لیے ہوتی ہے, اور یہ مضبوطی اور اطمینان وجوب کے مناسب ہے. کس کے مناسب ہے؟ وجوب کے مناسب ہے. دیکھو جب عقد بیع ہوگا تو مشتری پر سمن واجب ہو جائیں گے. توجہ ہے, مشتری پر سمن واجب ہو گئے تو دیکھو وجوب آ رہا ہے اور سمن اس پر واجب ہو گئے, اور اس وجوب میں اطمینان کس طرح ہوگا کہ وہ رہن رکھوائے, آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ پیسے ضرور مل جائیں گے, یا وہ کیا کر دے کسی کی ضمانت دلوا دے, ضمانت کروا دے. تو دیکھو یہاں وجوب آ رہا ہے اور وجوب کے مناسب ہے کفالت بھی اور رہن بھی. توجہ ہے, پھر سنو استحسان کی وجہ کیا؟ کیونکہ یہ جو رہن اور کفالت ہیں یہ مضبوطی اور اطمینان کے لیے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ مضبوطی, کہ آپ کا دین مضبوط ہو جائے, اب وہ لے کر اس کو بھاگ نہ سکے, وصولی پکی ہو جائے, اور یہ نیز آپ کو اطمینان ہو جائے بھئی ایک دین ہے بغیر رہن کے اور ایک دین ہے رہن کے ساتھ. اطمینان کس میں زیادہ ہوتا ہے؟ رہن والا. اور اسی طرح ایک دین ہے بغیر کفالت اور ضمانت کے, کسی نے ضمانت نہیں دی, اور ایک وہ دین ہے جس میں کسی نے ضمانت دی ہوئی ہے, کفالت کی ہوئی ہے. تو کس میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے دل کو؟ کفالت والا, کہ اب پیسے ڈوبیں گے نہیں, اب ضرور مل جائیں گے. تو معلوم ہوا یہ جو رہن اور کفالت ہیں یہ اطمینان کے لیے ہوتے ہیں, اور اس جو چیز واجب ہوئی ہے اس کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ انکار نہیں کر سکے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جو وجوب آیا اس کے اوپر, وہ جو سمن اس پر واجب ہو گئے ہیں, وہ وجوب پکا ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. تو رہن اور کفالت جو ہیں یہ اطمینان اور مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں, اور اطمینان اور مضبوطی وجوب کے مناسب ہے. جہاں بھی کسی پر کسی کی کوئی چیز واجب ہو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ اطمینان ہونا چاہیے, اور وہ وجوب مضبوط ہونا چاہیے, کل کو وہ انکار نہ کر سکے. تو حاصل کلام کیا؟ کہ استحسانن یہ بیع جائز. کیوں؟ کیونکہ کفالت اور رہن کس لیے ہیں؟ اطمینان کے لیے, بھروسے کے لیے, یوں کو بھروسے کے لیے ہیں, اور مضبوطی کے لیے ہیں تاکہ وہ دین کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے, کل وہ انکار نہ کر سکے. تو رہن اور کفالت مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں, اور مضبوطی وجوب کے مناسب ہے. آپ کی جب کوئی چیز کسی پر واجب ہو تو کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کو اطمینان اور بھروسہ ہونا چاہیے, اور مضبوط ہونا چاہیے وجوب, وہ کل کو انکار نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عقد تو صحیح ہو گیا, یہ شرط بھی صحیح ہو گئی, تو کیا اب مشتری پر لازم ہے کہ وہ وہی معین چیز اب بطور رہن کے بائے کے حوالے کرے, یا اسی معین شخص کی ضمانت کروائے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, مشتری پر ضروری نہیں. مشتری انکار بھی کر سکتا ہے, مشتری انکار بھی کر, عقد بیع کر لے, لیکن عقد بیع کرنے کے بعد پھر وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی, میں اپنی فلاں گاڑی آپ کے پاس بطور رہن کے نہیں رکھواؤں گا, یا میں زید کی کفالت پر راضی نہیں, میں اس کی کفالت نہیں کرواؤں گا. تو کہتے ہیں بھائی مشتری انکار بھی کر سکتا ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بائے کو تو اطمینان ہی نہیں ہے اس رہن یا کفالت کے بغیر, اس کو تو خوف ہے کہ کہیں میرے پیسے ڈوب نہ جائیں, یہ لے کر بھاگ نہ جائے, بھائی اسے کون وصول کرے گا, یہ بعد میں انکار نہ کر دے تو میں کیا کروں گا. تو بائے نے تو شرط لگائی تھی رہن اور کفالت کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشتری کیا کر سکتا ہے؟ اس سے انکار بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں ہاں بھائی, بائے نے یہ شرط لگائی تھی اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے, تو اس صورت میں بائے کو بھی اختیار ہوگا, وہ چاہے تو اسی طرح بغیر رہن کے اور بغیر کفالت کے ہی راضی ہو جائے, بے کو اسی طرح برقرار رکھے, اور چاہے تو بے کو فسخ کر دے کیونکہ مشتری انکار کر رہا ہے. ہاں ایک صورت میں بے کو فسخ نہیں کر سکتا, اور وہ یہ کہ مشتری اسی مجلس میں سارے سمن ادا کر دے. اگر سمن ادا کر دیے اب تو رہن اور کفالت کی ضرورت ہی نہ رہی بھائی, لہذا اس صورت میں بھی بائے اب بے کو فسخ نہیں کر سکتا. یا वो जो बाय ने कहा था मुझे अपनी फलां गाड़ी मेरे पास बतौर रहन के रखवाना, मुश्तरी ने इनकार कर दिया कि मैं वो गाड़ी आपके पास रहन नहीं रखवाऊंगा। हां, उस गाड़ी की कीमत 10 लाख है, ये लो 10 लाख बतौर रहन के अपने पास रख लो। समन नहीं दे रहा बल्कि उस गाड़ी की कीमत बतौर रहन के हवाले कर रहा है। तो कहते हैं फिर भी अब बाय बाय को फसख नहीं कर सकता, क्योंकि एक गाड़ी की सूरत है, एक उसकी मालियत है, मालियत, और रहन में मकसूद जो है वो क्या होती है, उसकी मालियत मकसूद होती
होती
है, सूरत मकसूद नहीं
नहीं
होती। तो जब इसने उसी गाड़ी जितना माल बतौर रहन के रखवा दिया तो गोया वही गाड़ी ही रखवा दी, अब बाय को फसखे बै का इख्तियार नहीं है।
होती
देखिए भाई किताब पर कहते हैं, वमन शरा शई अन आला अयर हना शई अन अवयोतिया कफी लंबी आईनी ही मामिन समनी ही। शरा का यहां माना करें बेचने के, बेचने के, क्योंकि आप जानते हैं बै और शिरा, बै का माना बेचने के भी आते हैं और खरीदने के भी, लेकिन ये बै ज्यादातर बेचने के माना में इस्तेमाल होता है, और शिरा के माने बेचने के भी और खरीदने के भी, लेकिन ये ज्यादातर खरीदने में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर बै के माना में करेंगे फिर ही तर्जमा सही होगा। कहते हैं वमन शरा शई अन, और जिसने किसी को कोई चीज बेची, आला अय्यर हाना, देखा आला आया शर्त के लिए आता है आला, इस शर्त पर कि अय्यर हाना शई अन अवयोतिया कफीलम बी आई निहिमा, इस शर्त पर कि वो मुश्तरी रहन रखवाएगा कोई मुआयन चीज, अवयोतिया कफीलम बी या कोई मुआयन कफील, कि मुश्तरी कोई मुआयन चीज बतौर रहन रखवाएगा या कोई मुआयन कफील जो है देगा। ये देखो ये जो बेआईनी ही मा, इसका ताल्लुक कफील और शैअन दोनों से है, और असल में इबारत खोलकर बयान की जाए तो यूं होगा, आला अय्यरहना शैअन बेआईनी ही, इस शर्त पर कि वो रहन रखवाएगा शैअन बेआईनी ही कोई मुआयन चीज, और युअतिया कफीलन बेआईनी ही, या अता करेगा ऐसा कफील बेआईनी ही जो मुआयन है। फिर तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और हुमा की जमीर जो ये कफील और शैअन को राजे है। तो कहते हैं वमन शरा शैअन आला अय्यर हना शैअन अवयोतिया कफीलम बी आई निही मा मिन समनी ही, और जिसने कोई चीज बेची इस शर्त पर कि मुश्तरी कोई मुआयन चीज या कोई मुआयन कफील देगा, मिन समनी ही इस मबिया के समन की वजह से, वह आबा, और मुश्तरी ने इनकार कर दिया वो मुआयन कफील देने से या वो मुआयन चीज रहन रखवाने से, साहा, तो भी ये आकद सही है, इस्तेहसानन भाई, इस्तेहसानन सही है, कियासन सही नहीं। कहते हैं वल कियास अल्ला यजूजा, और कियास तो ये है कि ये अकद जायज नहीं, लिअन्नहु सफकतुन फी सफकतिन, क्योंकि ये एक आकद में दूसरा आकद है, एक आकद में दूसरा आकद है, और इसे तो मना किया गया है, ये जायज नहीं है। याद रखिए इस बारे में हदीस आती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सफकतैनी फी सफकतिन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक आकद में दो आकदों से मना फरमाया है। तो मालूम हुआ कि ये सफका फी सफका क्या है, एक अकद में दूसरे अकद मन ही अनहू है, इससे मना किया गया है, मना किया गया है, तो ये दुरुस्त नहीं। तो हदीस के अंदर भाई हुजूर अलैह सलाम ने एक अकद के अंदर दो अकद करने से मना फरमाया है, तो सफका फी सफका मालूम हुआ दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु शर्तुन मुलाइमुन, मुलाइम का माना मुनासिब, इस्तेहसान की वजह यह है कि ये ऐसी शर्त कि ये मुनासिब शर्त है, लिअन्न अल कफालता वर रहना लिल इस्तिसाक, यहां एक लफ्ज रह गया है भाई, किताबत की गलती है, लिअन्न अल कफालता वर रहना लिल इस्तिसाक, इसलिए क्योंकि कफालत और रहन जो होते हैं वो मजबूती के लिए होते हैं, वो इत्मीनान और भरोसे के लिए होते हैं, इस्तिसाक का माना चाहे मजबूती के कर लें चाहे इत्मीनान और भरोसे के। इसलिए क्योंकि कफालत और रहन जो होते हैं लिल इस्तिसाकी, वो इत्मीनान और भरोसे के लिए होते हैं। वल इस्तिसाक मुलाइमुन लिल वुजूब, और ये मजबूती और भरोसा जो है मुलाइमुन लिल वुजूब, ये मुनासिब है वुजूब के। जब किसी पर कोई चीज वाजिब हो तो वो मजबूत तरीके से होनी चाहिए, तब बाद में वसूल भी हो सके, या किसी पर कोई चीज वाजिब हो तो वहां इत्मीनान और भरोसा होना चाहिए कि ये बाद में वसूल हो जाएगी। व इन्नमा काला बिआइनिहिमा, कहते मातिन ने मतन में मुअय्यन कफील और मुअय्यन चीज को जिक्र किया कि बाय ने किसी मुअय्यन चीज के रहन रखवाने की शर्त लगाई या मुअय्यन कफील की शर्त लगाई, क्योंकि अगर मुअय्यन चीज या मुअय्यन कफील की शर्त न लगाई तो वैसे ही कहा कोई चीज मेरे पास रहन रखवाओगे या मुझे किसी की जमानत दिलवाओगे, तो याद रखिए इस सूरत में फिर बै फासिद हो जाएगी, इसलिए क्योंकि रहन मजहूल हो गया, कफील मजहूल हो गया। तो जब रहन मजहूल हुआ तो रहन में जहालत आ गई तो बाद में झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। बाय चाहेगा मेरे पास कोई कीमती चीज रहन रखवाए और मुश्तरी की कोशिश होगी कोई मैं थोड़ी सी चीज रहन के तौर पर रखवा दूं, तो दोनों में झगड़ा होगा बाद में। या कफील की बात आई तो बाय चाहेगा कि किसी मालदार आदमी को जमानत दिलवाए ताकि बाद में पैसों की वसूली यकीनी हो जाए, और मुश्तरी चाहेगा किसी आम से आदमी की जमानत दिलवा दे, तो दोनों में झगड़ा होगा, नाराजगी होगी। तो इस लिहाजा अगर कफील मुअय्यन ना हुआ या रहन मुअय्यन ना हुआ बल्कि वैसे ही रहन की या कफील की शर्त लगा दी तो बैअ फासिद हो जाएगी। कहते हैं वह इन नमा काला बेआई निहिमा, मातिन ने बेआई निहिमा कहा ली अन नहू लव लम यकुन रहनु अविल कफील मुआयन, इसलिए क्योंकि अगर रहन या कफील मुआयन न हुए यफ सुदुल बैउ तो बैउ फासिद हो जाएगी जहालत की वजह से, झगड़ा आएगा। वला युजबरु अलल वफाई, और मजबूर नहीं किया जाएगा मुश्तरी को अलल वफाई पूरा करने पर, वफा का माना पूरा करना या अदायगी करना, मुश्तरी को इसकी अदायगी या पूरा करने पर, इस शर्त के पूरा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हाजा इंदाना, ये हमारे नजदीक है, भाई क्यों नहीं मजबूर करेंगे, शर्त लगाई है। कहते हैं लिअन नहु ला जबरा अलत तबर्रुआत, इसलिए क्योंकि जबर नहीं होता तबर्रुआत पर, तबर्रुआत में जबर नहीं। तबर्रु कहते हैं वो, तबर्रु कहते हैं यूं को एहसान के तौर पर, एक चीज आदमी अपनी तरफ से दे जो उस पर वाजिब ना हो उसको तबर्रु कहते हैं। तबर्रु किसे कहते हैं, एक चीज जो आदमी अपनी तरफ से दे उस पर वाजिब ना हो लाजिम ना हो उसको तबर्रु कहते हैं, सवाब के तौर पर, या वैसे कोई चीज दे अपनी तरफ से। तो ये जैसे नफल है, नफल भी क्या है, तबर्रु है, इंसान पर लाजिम नहीं। तो तबर्रु कहते हैं वो काम जो अपनी तरफ से इंसान करे उस पर लाजिम ना हो, लाजिम ना हो। तो यहां पर भी ये जो रहन और कफील दे रहा है ये तबर्रुअन है भाई, किसी देन में किसी पर लाजिम नहीं होता कि वो जमानत दे, उसकी मर्जी है जमानत किसी की दे या जमानत ना दे। भाई अगर जमानत नहीं देता दूसरा इनकार कर दे, जो देन देने वाला है वो क्या कर दे, इनकार कर दे भाई, लेकिन उस पर कफील देना जामिन देना वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है भाई। तो अगर वो कफील देने पर तैयार नहीं तो जो देन देने वाला है वो देन देने से इनकार कर दे। और इसी तरह रहन रखवाना, रहन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि अक़्दे रहन में ईजाब कबूल हो भी जाए तो भी अक़्दे रहन ताम नहीं होता जब तक वो रहन सुपुर्द न करे मुर्तहिन के। तो देखो रहन भी कोई लाजिम नहीं है, आप किसी से देन लेते हैं और वो आपको कहता है कि मेरे पास रहन रखवाओ तो ये रहन देना आप पर लाजिम नहीं है, आप अगर रहन देने पर तैयार नहीं तो मर्जी है आपकी, हां फिर उसकी मर्जी है वो देन ना दे। बात समझ में आ गई, तो ये तबर्रुआत में से है जो अपनी तरफ से इंसान करता है उस पर लाजिम नहीं है। और जब अक़्द तबर्रु है, जब अक़्द तबर्रु है तो तबर्रुआत में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपका एक साथी बैक करने लगा और बाय ने कहा कि किसी इसकी जमानत दिलवाओ, आपकी जमानत मांगी कि ये जमानत दे दे तो फिर मैं बैक के लिए तैयार हूं। तो मुझे बताइए क्या ये जमानत देना आप पर लाजिम है या आपकी मर्जी आप जमानत दें या ना दें। आपकी मर्जी है, आप किसी की जमानत दें या जमानत ना दें, तो ये तबर्रुआत में से है। इसी तरह ये रहन ये भी किस में से है, तबर्रुआत में से है। किसी ने किसी से देन मांगा और उसने कहा मेरे पास कोई चीज रहन रखवाओ, उसने इनकार कर दिया मैं कोई चीज रहन नहीं रखवाऊंगा, तो वो उसकी मर्जी है न रखवाए, और देन देने वाले को फिर इख्तियार है, वो भी कहे फिर मैं वैसे देन नहीं देता। तो बहरहाल मकसद ये है बतलाने का कि रहन और कफालत किस में से हैं, तबर्रुआत में से हैं। ये ऐसी है जैसे किसी को तोहफा देना, तोहफा देना, आप किसी को तोहफा देते हैं वो अपनी तरफ से वैसे ही देते हैं या आप पर लाजिम होता है, वैसे देते हैं अपनी तरफ से देते हैं, और तबर्रुआत में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, लिहाजा आपको भी कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपको जबरदस्ती ये तोहफा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं हाजा इंदना, ये हमारे नजदीक है कि मुश्तरी को उसको पूरा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, लियन्नहु ला जबरा अला तबर्रुआत, क्योंकि तबर्रुआत पर जबर नहीं होता, उनमें मजबूर नहीं किया जा सकता। वाइंदा जुफर रहमहुल्लाह युजबरू, इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुश्तरी को मजबूर किया जाएगा कि वो रहन दे या कफील दे, लियन रहन इदा शुरित फिल बैई सारा हक्कम मिन हुकूकिही, इसलिए क्योंकि रहन जब उसकी शर्त लगा दी गई बै के अंदर तो सारा हक्कम मिन हुकूकिही, तो बै के हुकूक में से एक हक बन गया, ब्याह के हकूक में से उसका हक बन गया, तो इसको पूरा करना जरूरी है। कल वकालत इल मशरूत अतिफिर रहनी, जैसे वो वकालत जिसकी शर्त लगाई जाए रहन के अंदर, यानी अकदे रहन में। इमाम जुफर फरमाते हैं कि यहां मुश्तरी को मजबूर किया जाएगा क्योंकि अकदे ब्याह के अंदर रहन की शर्त लगा दी गई, और जब ब्याह के अकद के अंदर शर्त लगा दी गई तो अब ये रहन ब्याह के हुकूक बन गए, ब्याह के, और वो इसको कयास करते हैं वकालत मशरूता फिर रहन पर। वकालत मशरूता फिर रहन, वकालत मशरूता फिर रहन ये है कि आपने किसी से देन लिया और उसने कहा मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवाओ, जिसका देन था उसने कहा, आपने अपना गुलाम उसके पास बतौर रहन के रखवा दिया और उसी अकद के अंदर ही आपने जैद को वकील बना दिया। मसलन देखो भाई, आपने देन लिया है, आपने अगले महीने की यकम को देन देना है, तो आप अपना गुलाम बतौर रहन के रखवा रहे हैं। मुर्तहीन का फिर भी इत्मीनान नहीं होता का पता नहीं मेरे पैसे फिर भी वसूल होते हैं या नहीं होते, वो आपसे कहता है कि किसी को वकील बनाओ कि अगर एक तारीख तक आपने मेरे पैसे ना अदा किए तो वो इस गुलाम को बेचेगा और इसके समन के जरिए मेरे देन को अदा करेगा। तो चुनांचे उस अकदे रहन के अंदर ही अकद करते हुए ही जब वो गुलाम आप हवाले कर रहे हैं, वह आकद कर रहे हैं, तो उस आकद ही में आपने एक तीसरे शख्स को वकील बना दिया कि देखो भाई ये गुलाम अपना मैं इसके पास बतौर रहन के रखवा रहा हूं और मैंने यकम मसलन यकम मार्च तक मैंने 10 लाख रुपए इसका देन अदा न किया, तो आप वकील हैं, आप मेरे इस गुलाम को बेचना और इसके 10 लाख रुपए अदा कर देना। तो देखो अकदे रहन के अंदर वकील की शर्त लगा दी, वकील बना दिया, किसमें अकदे, एक है रहन के बाद वकील बनाना, उसकी बात नहीं हो रही, अकदे रहन के अंदर ही वकील की शर्त लगा दी गई और वकील बना दिया गया। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि देखो अकदे रहन के अंदर अगर वकालत की शर्त लगा दी जाए तो आप भी इस बात को मानते हैं कि उस वकील को आप कोई माजूल नहीं कर सकता, हत्ता के राहिन जिसने उसको वकील बनाया था अब वो भी इसको माजूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये रहन के अकद के हुकूक में दाखिल हो गई है वकालत। भाई आप भी मानते हैं कि वकालत मशरूता फिर रहन जो है वो अकद रहन के हुकूक में दाखिल है और उसको अब राहिन भी माजूल नहीं कर सकता, उस शर्त को खत्म नहीं कर सकता। तो यहां पर भी इसी तरह है, यहां पर भी जब अकदे बैह के अंदर अकदे रहन की शर्त लगा दी गई तो यह अकदे रहन जो है उस अकदे बैह के हकूक में से बन गया, लिहाजा इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और इस अगर वो नहीं मानता मुश्तरी तो उसको मजबूर किया जाएगा कि वो इस शर्त को पूरा करे। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन रहन इदा शुरिता फिल बैई सारा हक्कम मिन हुकूक ही, इसलिए क्योंकि रहन जो है जब उसकी शर्त लगा दी जाए बैह के अंदर तो वो बैह के हुकूक में से बन जाता है, सारा हक्कम मिन हुकूक ही तो वो एक हक बन जाता है बैह के हुकूक में से, कल वकालतिल मशरूतति फिर रहनी, जैसे वो वकालत जिसकी शर्त लगाई जाए अकदे रहन में। हमने क्या कहा था क्योंकि ये रहन और कफालत क्या है, तबर्रुआत में से हैं और तबर्रुआत में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये वो शख्स अपनी तरफ से करता है और अपनी तरफ से जो काम किया जाए वो किसी पर लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। और इमाम जुफर की दलील क्या आई, वो क्या फरमाते हैं, मजबूर करेंगे क्योंकि अकदे ब्याह के अंदर ये शर्तें लगाई गई तो ये अकदे ब्याह के हकूक में से बन गई ये रहन, लिहाजा उसको मजबूर किया जाएगा। और इमाम जुफर इसको कियास कर रहे हैं किस पर, वकालत मशरूता फिर रहन पर। याद रखना, एक बात याद रखना, ये हमारे अइमा का आपस में इख्तिलाफ होता है, जैसे यहां पर हमारे बाकी अइमा एक तरफ और इमाम जुफर एक तरफ हैं, और इमाम जुफर जो हैं दलील के तौर पर किसको जिक्र कर रहे हैं, कल वकालतिल मशरूतति फिर रहन, उसको जिक्र कर रहे हैं। दोनों का आपस में दलीलों का टकराव आ रहा है, एक दलील है हमारे अइमा की बाकी अइमा की और एक दलील है इमाम जुफर की, और इमाम जुफर दलील के तौर पर किसको जिक्र कर रहे हैं, वकालत मशरूता फिर रहन को। याद रखो जब फरीक मुखालिफ किसी और चीज पर एक को कियास करे और उसको बतौर दलील के जिक्र करे तो वहां दरअसल मकसद यह बतलाना होता है कि देखो ये मसला तो तुम भी मानते हो। तो इमाम जुफर भी यहां यही फरमा रहे हैं कि देखो वकालत मशरूता फिर रहन, वकालत मशरूता फिर रहन, उसको तो आप भी तस्लीम करते हैं कि उस वकालत को कोई खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वो रहन के हुकूक में से बन गई। तो यहां तो ये मामला भी उसी की तरह है, यहां पर भी ये रहन उस बै के हुकूक में से बन गई तो ये भी उसी जैसी सूरत है, और उस सूरत पर तो आप इत्तेफाक करते हैं, आप मानते हैं कि वहां ऐसा है तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम वही जवाब देते हैं कि भाई ये रहन और कफालत तबर्रुआत में से हैं और तबर्रुआत में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरी जगह होगा, मसलन इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का आपस में इख्तिलाफ आएगा, मसलन तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जवाब में किसी और मसले पर कियास करेंगे कि देखो वहां पर ऐसा है तो यहां भी ऐसा, तो वो जो दूसरा मसला जिसको जिक्र किया जाता है ना वो इत्तेफाकी होता है, यानी फरीके मुखालिफ भी उसको मान रहा होता है, इसीलिए उसको जिक्र करते हैं कि देखो वहां तो आप ये बात मानते हैं तो यहां भी आपको ये बात मानना पड़ेगी। तो इमाम जुफर भी यही फरमा रहे हैं कि वकालत मशरूता फिर रहन, उसमें तो आप भी मानते हैं कि मसला इसी तरह है तो लिहाजा यहां भी ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये जगह जगह इसी तरह दलाइल चल रहे होते हैं, और एक फरीक जो है साथ ही कियास को भी जिक्र कर देता है कि जैसे यहां कल वकालती, जैसे के वकालत है, जैसे के वकालत, तो इसी तरह काफ के साथ इबारत जिक्र कर दिया जाता है, कियास करते हैं उस मसले पर, और वो जो मसला होता है वो फरीके मुखालिफ भी उसको मानता है, तस्लीम करता है, इसीलिए उसको वो दलील के तौर पर जिक्र करते हैं। आगे देखिए, वलिल बाए फसखुहु, और बाए को ये बै फसख करने का इख्तियार है क्योंकि उसने एक शर्त लगाई थी और वो शर्त पूरी नहीं हुई, वो शर्त मुश्तरी मान नहीं रहा, यानी शर्त तो मान ली थी लेकिन बाद में उसको पूरा नहीं कर रहा, तो बाय को इख्तियार है कि वो क्या कर सकता है, बाय को फसख कर सकता है और चाहे तो बरकरार रखे। कहते हैं वलिल बाई फसखुहु, और बाय के लिए जायज है उस बाय को फसख करना, इल्ला इदा सल्लम थमनहु हालन औ कीमत रहनी रहनन, मगर ये कि जब सुपुर्द कर दे मुश्तरी समनहु उस मबीए के समन, हालन यानी फिलहाल ही उसी मजलिस में, तो फिर बाय फसख नहीं कर सकता। बाय फसख कर सकता है, लेकिन अगर मुश्तरी उसी मजलिस में क्या कर दे, वो जो समन महीने बाद देने थे वो उसी मजलिस में दे दे, तो अब बाय बे को फसख नहीं कर सकता। और कीमत रहनी रहनन, या मुश्तरी क्या करे, वो जो मुअय्यन चीज थी वो तो देने से उसने इनकार कर दिया है रहन के तौर पर, लेकिन उसकी कीमत दे देता है कि इस गाड़ी, वो गाड़ी जो आपने बतौर रहन के मांगी है, गाड़ी तो मैं आपको नहीं दूंगा लेकिन उसकी कीमत 10 लाख है, ये बतौर रहन के आप रख लें, तो रहन के तौर पर उस मुअय्यन रहन की अगर कीमत दे दे मुश्तरी तो भी बाय को बे के फसख करने का इख्तियार नहीं। यह माना है इल्ला इदा सल्लम अथमनहु हालन औ कीमत रहनी रहनन, मगर यह कि जब मुश्तरी जो है वो सुपुर्द कर दे उस मबीए के समन हालन फिल हाल ही उसी मजलिस में, औ कीमत रहनी रहनन या हवाले कर दे रहन की कीमत रहनन बतौर रहन के, इद इंदना लम्मा सहा शर्तु, यह वजह जिक्र कर रहे हैं कि बाय को फसखे बे का इख्तियार क्यों है, कहते हैं इसलिए क्योंकि एक वस्फे मरगूब फौत हो गया, बाय को एक वसफ में रगबत थी, बाय चाहता था कि ये मेरे पास क्या करे, वो मुअय्यन चीज रहन रखवाए या मुअय्यन आदमी की मुझे जमानत दिलवाए, तो ये एक वसफे मरगूब था, क्या था, वस्फ मरहूब जिसमें लोग रगबत करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं। आप बताइए भाई, एक शख्स है आप उसको देन देते हैं, एक सूरत है आप बगैर रहन के देन दें और एक सूरत है आप रहन रखवा लें अपने पास और फिर देन दें, आपको क्या ज्यादा पसंद, रहन रखवा दें क्योंकि इसमें आपका इत्मीनान ज्यादा है, और एक है आप किसी को देन देते हैं और बगैर किसी कफील के, और एक यह है कि आप उसको देन देते हैं और वो कोई जामिन भी हवाले करता है, कोई जमानत भी देता है कि ये आपके पैसे लेकर भागेगा नहीं, अदा करेगा, तो किस सूरत में आपको इत्मीनान ज्यादा है, बगैर कफील की या कफील वाली सूरत, कफील वाली सूरत। तो देखा, मालूम हुआ रहन और कफील का होना देन के अंदर ये एक वस्फे मरगूब है, और बाय ने इसी की शर्त लगाई थी, और ये वस्फे मरगूब जो उसको जिसमें उसकी रगबत थी, जो वो चाहता था, वो ये वस्फे मरगूब फौत हो गया क्योंकि मुश्तरी ने इनकार कर दिया है, तो अब इसको इख्तियार मिल जाएगा कि क्या करे, बाय को फसख करना चाहे तो फसख कर दे। ये माना है, कहते हैं इस इंदाना लम्मा सहा शर्तु, इसलिए क्योंकि हमारे नजदीक जब ये शर्त सही है, फइन्नहु वस्फुन मरगूबुन फीही, क्योंकि ये एक ऐसा वसफ है जो मरगूब फी है, यानी इसमें लोग रगबत रखते हैं, फबी फवाती ही, तो इसके फौत होने की सूरत में यकून लिल बाई हक्कुल फस्खी, बाय को भी उस बे को फसख करने का हक होगा। आगे देखिए भाई, फइन قال لبائعه امسك هذا حتى اعطي ثمنك فهو الرهن। सूरत मसला ये कि एक शख्स दूसरे के साथ बै का मामला कर लेता है और बै का मामला कर लिया, ईजाब कबूल हो गया, अब देखो मुश्तरी मबीए का मालिक बन गया और उस पर समन वाजिब हो गए, अब वो समन अदा करेगा बै को, चुनांचे समन तो अभी वो अदा नहीं करता, हां अपनी एक चीज बाय को कहता है, अपनी चीज की तरफ इशारा करते हुए, अमसिक हाजा, इसको अपने पास रोक ले, इसको रोक ले, हत्ता उतिया समन का, यहां तक कि मैं आपके समन आपको दे दूं। याद रखो इस मसले का ताल्लुक अल्फाज से है, किससे है, अल्फाज से। मसलन फिर सुनो, मुश्तरी ने क्या कहा, मुश्तरी पर समन वाजिब हो गए, उसने अभी समन दिए नहीं, बल्कि बाय को क्या कहता है, मेरी ये चीज मसलन गाड़ी खड़ी थी, मेरी ये गाड़ी आप अपने पास रखें, यूं कहें उर्दू में यूं कहें, मेरी ये गाड़ी आप अपने पास रखें यहां तक कि मैं आपके समन आपको दे दूं। अब ये जो उसने अल्फाज बोले, मेरी गाड़ी अपने पास रोक लें, मेरी गाड़ी अपने पास रख लें यहां तक कि मैं आपके समन दे दूं, तो इससे वो चीज बाय ठीक है रोक लेता है, तो ये चीज उसके पास बतौर अमानत के है या बतौर रहन के है, तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि ये चीज बतौर रहन के हो गई, ये चीज बतौर रहन के हो गई, तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि ये चीज उसके पास बतौर रहन के है, लिहाजा ये चीज उसके पास हलाक हुई तो उस पर जमान आएगा, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्ला फरमाते हैं कि बाय अगर इस चीज को रोक लेता है तो यह चीज रहन नहीं है, यह अमानत है, और अमानत का तो जमान नहीं आता, लिहाजा अगर यह उसके पास हलाक हो गई तो उस पर जमान भी नहीं आएगा। इमाम जुफर रहमतुल्ला फरमाते हैं कि यह चीज अमानत है, इसलिए क्योंकि उसने जो अल्फाज बोले हैं वो अमानत वाले अल्फाज हैं, वो रहन वाले अल्फाज नहीं है। रहन में तो साफ लफ्जों में कहता, ये चीज मैं आपके पास रहन के तौर पर रखवाता हूं, या ये चीज मैं इन पैसों के बदले आपके पास रखवाता हूं। देखो साफ लफ्ज है, पैसों के बदले में, यह चीज मैं आपके पास रहन के तौर पर रखवाता हूं। फिर इसने रहन बनना था, लेकिन इसने तो आम अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या कहा, ये चीज अपने पास रख लें, यह चीज आप रोक लें, और ये चीज रख लें रोक लें, इसमें तो रहन का भी एहतमाल और अमानत का भी एहतमाल है। और रहन है आला दर्जे की चीज और अमानत है अदना दर्जे की। भाई किस तरह आला अदना, भाई मुराद यह है कि रहन में जमान आता है और अमानत में जमान नहीं आता। आप जानते हैं अमानत किसी के पास रखवाई जाए और वो चोरी हो गई और हलाक हो गई, तो इस सूरत में वो जो मुद्दा है जिसके पास अमानत रखवाई गई है उस पर जमान नहीं आता, अगर उसने कोई ज्यादती नहीं की, उसने अपनी तौर पर अपनी तरफ से बेहतरीन हिफाजत के साथ वो चीज रखी थी तो उस पर जमान नहीं। और अगर उसने कोई ज्यादती की है, कीमती चीज थी और उसने जानबूझकर खुली रखी हुई थी जिसे सब देख रहे थे, तो इस सूरत में मालूम हो उसने ज्यादती की है तो फिर उस पर जमान आएगा। तो मालूम हुआ अमानत में जमान नहीं आता, और रहन में तो आप पढ़ चुके हैं कि जमान आता है, देन और रहन की कीमत में से जो अकल हो वो जमान आया करता है। तो यहां पर भी इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस शख्स ने जो अल्फाज बोले कि मेरी गाड़ी अपने पास रख लो, मेरी गाड़ी अपने पास रोक लो, मेरी गाड़ी अपने पास रख लो यहां तक कि मैं आपके पैसे अदा कर दूं, ये मेरी गाड़ी अपने पास रोक लो यहां तक कि मैं आपके पैसे अदा कर दूं, तो ये गाड़ी रोक लो या रख लो, इसमें साथ वो समन की अदायगी को भी जिक्र कर रहा है, यहां तक कि मैं क्या कर दूं आपके समन अदा कर दूं, तो रहन का भी इहतमाल और इसमें हो अमानत का भी इहतमाल है। हो सकता है वो अमानत के तौर पर रखवाना चाह रहा हो, वैसे ही रहन के तौर पर नहीं, तो इसमें रहन और अमानत दोनों का इहतमाल है, और रहन है आला और अमानत है अदना, यानी बई लिहाज कि अमानत आसान है कि उसमें जमान नहीं आता, और रहन जरा मुश्किल है कि उसमें क्या आता है, जमान आता है। और जब एक चीज में दो चीजों का इस्तेमाल हो तो उसमें जो आसान होती है और जो अदना होती है वो तो यकीनी साबित है, कम अज कम अमानत तो जरूर है, रहन के होने न होने में शक है, लेकिन अमानत तो जरूर है। अमानत से कम दर्जा तो यहां कोई नहीं ना, तीसरा दर्जा तो है ही नहीं, तो कम अज कम अमानत तो जरूर है, तो जो यकीनी है वो साबित हो जाएगा और रहन साबित नहीं, लिहाजा ये चीज उसके पास बतौर अमानत के होगी, और अगर इसके पास ये हलाक हो गई बगैर तादी के तो इस बाय पर उसका जमान नहीं आएगा। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, ये अल्फाज अमानत जैसे हैं, रहन के सरीह अल्फाज नहीं, लेकिन जो उस साथ उसने कैद लगा दी, क्या कहा, ये गाड़ी अपने पास रखें, ये गाड़ी अपने पास रोक लें, साथ कैद लगा दी यहां तक कि मैं आपके पैसे आपको दे दूं, ये जो साथ इंतहा बयान कर दी कि उस वक्त तक रोक लो जब तक मैं आपके पैसे अदा कर दूं, ये तो रहन के अंदर होता है, मालूम हो वो ये चीज बतौर रहन के रखवा रहा है, अमानत के अंदर तो इस तरह इंतहा बयान नहीं की जाती। तो यहां एतबार माना का है, लफ्जों का नहीं। लफ्जों के एतबार से तो देखें, लफ्ज तो बेशक अमानत वाले हैं, लेकिन साथ जो उसने कैद लगा दी उस कैद की वजह से अब सूरत किसकी बन गई, रहन वाली बन गई, तो ये रहन ही होगा। ये इसी तरह है, कहते हैं असल में एतबार माना का होता है, किसका एतबार होता है, माना का, और लफ्जों का एतबार नहीं। ये इसी तरह है, जैसे देखो एक शख्स दूसरे को गाड़ी तोहफे के तौर पर देता है कि ये गाड़ी मेरी तरफ से बतौर तोहफा आपकी है, तो ये क्या है, हिबा है, तोहफा है, लेकिन यही गाड़ी देते हुए अगर वो थोड़ी सी तब्दीली कर दे लफ्जों में तो वो बेअ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मसलन कहता है ये गाड़ी मेरी तरफ से आपकी हो गई, लेकिन शर्त यह है ये जो आपकी जेब पर कलम है ये मुझे आप दे दें, अब भाई कलम तो गाड़ी की कीमत के बराबर नहीं है, कलम तो चंद सौ रुपए का होगा, बड़ा अच्छा कलम भी हो, और गाड़ी तो लाखों रुपए की है, ये वैसे ही एक चीज उससे ले रहा है। लेकिन मुबादलतुल माल बिल माल आ गया, इसकी तरफ से गाड़ी उसकी तरफ के मुंतकिल हुई और उसकी तरफ से कलम इसकी तरफ मुंतकिल हुआ, ये और ये किस में होता है, बेअ में होता है, मुबादलतुल माल बिल माल। लिहाजा ये सूरतन तो हिबा है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, फुकहा फरमाते हैं ये बेअ है, बेअ वाले अहकाम जारी होंगे। बात समझ में आ गई? तो एतबार अल्फाज का नहीं है बल्कि किसका है, माना का है, और माना के एतबार से जब उसने हिबा के अंदर शर्त लगा दी किसी चीज के देने की, तो ये क्या बन जाती है, बेअ। तो यहां पर भी अमानत वाले अल्फाज के साथ जब उसने मुद्दत, जब उसने इंतहा बयान कर दी कि कब तक ये चीज अपने पास रोकनी है, जब तक मैं पैसे अदा कर दूं, तो मालूम हुआ ये अब अमानत नहीं है बल्कि क्या है, रहन है, क्योंकि रहन में ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? कहते हैं फइन क़ाला लिबाइही, पस अगर मुश्तरी ने कहा लिबाइही उसके अपने बाय से, अमसिक हाजा की ये चीज रोक ले, हत्ता उतिया समाना का, यहां तक कि मैं तुझे दे दूं इसके समन, फहुआ रहनुन तो ये रहन होगा, ये इता रहन होगा। अतल मुश्तरील बाई अशई अन गैर मबी ही, यानी दिया मुश्तरी ने बाय को कोई ऐसी चीज गैर मबी ही जो उसके मबीए के अलावा है, मबिया नहीं, मबिया नहीं। बात समझ में आ रही?
जी
जो वो जो कहा ना कि ये चीज अपने पास रोक ले, ये
जी
मबिया नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
तीसरी
मसलन हाँ, मबीहा भी रुकवा सकता है, इसी तरह उसका भी यही हुक्म होगा, लेकिन उसमें जरूरी है कि मुश्तरी एक दफा मबीहा लेकर उस पर कब्जा कर ले, और फिर कब्जा करने के बाद कहे ये अपने पास रोक लो। कपड़ा उसे खरीदा था, एक दफा ले लिया, अपने हाथ में कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर, अब क्या कहता है, ये अपने पास रोक लो यहां तक कि मैं आपको आपके पैसे दे दूं, तो इसका भी यही हुक्म है। तो मबीआई में पहले कब्जा करे, फिर उसको कहे कि अपने पास रख लो। सूरत समझ में आ गई? आतल मुश्तरिल बाय शय अन गैर मबी ही, यानी दे आता किया मुश्तरी ने बाय को कोई ऐसी चीज गैर मबी ही जो उसके मबीए के अलावा थी। ये यूं को मबीए का भी यही हुक्म, बस सिर्फ उस चाहे मबिया रखवाए चाहे गैर मबिया, लेकिन मबिया में बस ये कि पहले अपने कब्जे में एक दफा कर ले ताकि मबिया उस बाय के कब्जे से निकल आए, और फिर उसके बाद रहन के तौर पर रखवा दे। वकाल और कहा हम सिख हाजा हत्ता उतिया समाना का, कि रोक ले इस चीज को, ये इस चीज को अपने पास रखो यहां तक कि मैं आपको आपके पैसे दे दूं, आपके समन दे दूं, यकून रहनन तो वो चीज रहन होगी। लिया नहु तलफ बिमा युम बी ओनिर रहनी, इसलिए क्योंकि उसने तलफुज किया, यानी लफ्ज बोले हैं ऐसे जो खबर दे रहे हैं रहन के बारे में, अम्बा आयुम बी ओ के माने खबर देना, उसने ऐसे लफ्ज बोले हैं जो खबर दे रहे हैं रहन के बारे में। कैसे रहन के बारे में खबर दे रहे भाई, जा साथ उसने ये कहा ना हत्ता ओ अतिया समाना का, सिर्फ अमसिक कहे, अमसिक तो अमानत वाले अल्फाज हैं, लेकिन हत्ता ओ अतिया समा यहां तक कि मैं आपके समन आपको दे दूं, ये जो साथ कैद बढ़ा दी, तो अब ये अल्फाज किसके खबर दे रहे हैं, रहन की, मालूम हो वो रहन रखवाना चाहता है। वल इबरतुल मानी, और एतबार मानी का है, किसका, मानी का एतबार है, अल्फाज सिर्फ लफ्ज का एतबार नहीं है, सूरत रहन वाली बन रही है, तो ये रहन ही होगा, वही हुक्म लगेगा। वाइंदा जुफर रहमहुल्ला ला यकून रहनन, और इमाम जुफर रहमहुल्ला के नजदीक ये रहन नहीं होगा। व इन रहना आइन अमिन रजुलैनी बिदैन इन लिकुल्लिम मिन हुमा सहा व कुल्लुहु रहनुम मिन कुल्लिम मिन हुमा। सबसे पहले तो एक बात ये याद रखें, याद रखो रहन के अंदर तो ज्यादती जायज है, देन के अंदर ज्यादती जायज नहीं। तवज्जो है? रहन में ज्यादती जायज है, देन में ज्यादती जायज नहीं। सूरत यह, मसलन आपने एक शख्स से 10 लाख रुपए कर्जा लिया और बतौर रहन के उसके पास अपनी गाड़ी रखवा दी, अब आप रहन में ज्यादती करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। आप चंद दिन बाद अपनी दूसरी गाड़ी भी ले गए और कहा यह भी उसी गाड़ी के साथ बतौर रहन के आप रख लें ताकि आपका इत्मीनान और बढ़ जाए। ये दोनों गाड़ियां उस देन के बदले रहन, तो देन वही एक है और रहन में क्या कर दिया इजाफा, तो ये जायज है। वो दोनों गाड़ियां अब उस देन के बदले रहन हो जाएंगी और वो देन देगा तो गाड़ियां दोनों वसूल करेगा। और दूसरी सूरत यह है कि देन में ज्यादती करता है, मसलन आपने गाड़ी रहन के तौर पर रखवाई थी और 10 लाख रुपए देन के तौर पर ले लिए, चंद दिन बाद आप दोबारा गए कि 5 लाख रुपए मुझे और दे दें। उसने कहा मेरे पास कोई चीज अपनी रहन रखवाओ। आपने कहा कि इस देन के बदले भी वही गाड़ी अपने पास बतौर रहन के रोक के रखो, तो यह जायज नहीं है क्योंकि गाड़ी वही एक है और देन पहले एक था 10 लाख और एक देन क्या आ गया मजीद 5 लाख, तो एक गाड़ी दो देनों के बदले रहन नहीं हो सकती। एक गाड़ी दो देनों के बदले रहन नहीं हो सकती, अब कोई और चीज रहन रखवाना पड़ेगी। आप देन में ज्यादती कर रहे हैं उसी रहन के बदले में, यह जायज नहीं। अब आइए इस मसले पर, कहते हैं वह इन रहा न आई न मिन रजुलैनी बिदैन लिकुल मिन हुमा साहा। सूरत मसला ये कि मैंने जैद का भी 1 लाख रुपया देना है और मैंने अमर का भी 1 लाख रुपया देना है, तो वो दोनों मेरे पास देन का मुतालबा करने आ गए कि देन हमें दे दो। मैंने उनको कहा भाई आपका देन मैं इस महीने की 1 तारीख को 1 मार्च को मैं आपका देन दे दूंगा, और ये लो ये मेरी गाड़ी बतौर रहन के आप दोनों अपने पास रख लें। तो उन दोनों का देन और उसके बदले मैंने अपनी गाड़ी रहन के तौर पर रखवा दी, तो आपको बतलाएंगे ये सही है, दोनों देनों के बदले एक गाड़ी रहन रखवाना सही है। सूरत समझ में आ गई? इस पर आपके जहन में फौरन इश्काल आएगा कि अभी आपने हमें बताया कि दो देनों के बदले एक चीज रहन नहीं हो सकती। भाई वो दोनों में फर्क है, यहां दोनों देनों के बदले एक ही अकदे रहन हो रहा है, दोनों इकट्ठे आए हैं, दोनों के साथ इकट्ठे में दोनों को एक ही अकद में वो गाड़ी दे रहा हूं कि ये गाड़ी आप दोनों बतौर रहन के रख लें दोनों देनों के बदले। तो अकदे रहन एक हुआ या अलग अलग हुए? अकदे रहन देन दो है ना, लेकिन गाड़ी तो मैं एक ही वक्त हवाले कर रहा हूं, तो अकदे रहन तो एक ही है, अकदे रहन एक ही है। देन चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, लेकिन अकदे रहन एक होना चाहिए और अकदे रहन एक ही है। 5 आदमी थे, मैंने 5ों से 1-1 लाख रुपया लिया हुआ है, मेरे ऊपर देन है, वो 5ों इकट्ठे मुतालबा करने आ गए, मैंने 5ों को अपनी गाड़ी एक ही अकद में हवाले की कि आप 5ों के देन के बदले ये गाड़ी आप बतौर रहन के रख लें, तो ये एक ही अकद में गाड़ी दे रहा हूं रहन के तौर पर, ये अकद रहन सही है और वो 5ों देनों के बदले ये गाड़ी रहन हो जाएगी। जबकि पहले जो मैंने सूरत जिक्र की थी वो क्या थी कि एक गाड़ी पहले से ही बतौर रहन है, एक गाड़ी, अब आप एक और देन लेकर उसके बदले भी उसी चीज को रहन रखवाना चाहते हैं, भाई वो तो पहले से ही रहन है, तो वहां देखो दो अकदे रहन थे, एक देन लिया तो एक गाड़ी अकदे रहन में गाड़ी रखवा दी और दूसरे देन के लिए दूसरा अकदे रहन कर रहे हैं लेकिन गाड़ी वही रहन है, तो दो अकद रहन के दो हो गए, दो देन हो गए और गाड़ी एक ही है रहन, ये नहीं हो सकता। यही सूरत अगर यहां हो तो भी जायज नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? यही सूरत अगर यहां बना लें, अकद कई कर दें और गाड़ी इब्राहिम एक ही है तो भी जायज नहीं। मसलन जैद मेरे पास आया कि मेरा 1 लाख रुपया दो, मैंने कहा ये गाड़ी मेरी आप बतौर रहन के अपने पास रख लें। थोड़ी देर बाद बकर आया, उसने कहा मेरे पैसे दो, मैंने कहा मेरी ये गाड़ी मैंने जैद को भी बतौर रहन के दिया, ये आपके पास भी बतौर रहन के है, ये अब जायज नहीं है। एक गाड़ी दो देनों के बदले दो अलग अलग अकदों में रहन रखवा रहा हूं, ये जायज नहीं। हां एक ही अकद हो, फिर चाहे 10 आदमी आ जाएं, मैंने इकट्ठी सबको एक वक्त गाड़ी दे दी, ये गोया यूं हो गया कि वो गाड़ी मजमूआए देन के बदले रहन हो जाएगी। किसके बदले? मतलब 5 आदमी आए थे, 5ों का 1-1 लाख रुपया मैंने देना है और मैंने एक ही अकद में कहा आप सब मेरी ये गाड़ी बतौर रहन के अपने पास रख लें, तो यूं समझा जाएगा ये गाड़ी अब 5 लाख के बदले बतौर रहन के है, मजमूआए देन के बदले रहन के तौर पर है। सूरत समझ में आ गई, फर्क समझ में आ गया। तो कहते हैं वह इन रहना आयन मिन रजुलैनी, अगर रहन रखवाई कोई मुआयन चीज मिन रजुलैनी दो आदमियों के पास, बिदैन ऐसे दैन के बदले, लिकुल्लिम मिन हुमा जो दोनों में से हर एक का था, सहा तो ये रखवाना सही, दो आदमियों का दैन था और उन दोनों के बदले एक ही आयन रहन रखवाई, सहा लेकिन मैंने बतलाया कि एक ही आकद होना चाहिए। वह कुल्लुहु रहनुम मिन कुल्लिम मिन हुमा, और ये पूरी गाड़ी, ये पूरी गाड़ी, ये पूरी मुतायन चीज, ये रहन होगी उनमें से हर एक के बदले, उनमें से हर एक के बदले। लिहाजा एक का देन में अगर अदा कर दूं और फिर कहूं लाओ गाड़ी मुझे दे दो, नहीं भाई, ये दोनों में से हर एक के बदले रहन थी, एक का देन अदा कर दिया तो अब भी गाड़ी बतौर रहन के दूसरे के पास रहेगी, जब तक दूसरे की भी एक एक रुपया मैं अदा न कर दूं गाड़ी उसके पास बतौर रहन रहेगी। हां जब एक का मैं अदा कर दूंगा, एक को मैं पैसे देन अदा कर दूंगा, अब उसका जमान खत्म हो गया, अब गाड़ी दूसरे के जमान में चली गई, पहले उसका भी जमान में थी। तो कहते हैं वकुल्लुहु रहनुन मिन कुल्लिम मिन हुमा, और वो पूरे मुआयन चीज पूरी की पूरी जो है वो रहन होगी मिन कुल्लिम मिन हुमा उनमें से हर एक के पास। अय यसीर कुल्लुहु महबूसन, वो पूरी की पूरी चीज जो है वो महबूस होगी, रोकी जाएगी, बिदैन कुल्ली वाहिदीन हर एक के दैन के बदले यानी रहन होगी। ला अन्ना निस्फहु यकूनु रहनन इंद हाजा व निस्फहु इंद हाजा, ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी का आधा तो रहन है इसके पास और आधा है दूसरे के पास। तवज्जो है, मैंने पांच आदमियों को अपनी गाड़ी एक ही अकद में बतौर रहन के दे दी, उन पांचों का मैंने देन देना है, इसका यह मतलब नहीं कि इस गाड़ी के पांच हिस्से हैं, एक हिस्सा एक के पास रहन, दूसरा दूसरे के पास, तीसरा तीसरा के पास, चौथा चौथे के पास और पांचवां पांच, नहीं ऐसा नहीं है, ये गाड़ी हर एक के पास पूरी की पूरी बतौर रहन के है। पहले का एक लाख है तो ये गाड़ी उस एक लाख के बदले भी पूरी रहन, दूसरे का एक लाख है तो उसके बदले भी ये पूरी गाड़ी रहन, तीसरे का एक लाख है तो उसके बदले भी ये पूरी गाड़ी रहन। इसलिए क्योंकि अगर ये कहें, ये दो वाली सूरत बनाओ जरा समझना आसान है, दो आदमियों का देन था एक एक लाख रुपया और मैंने एक ही अकद में गाड़ी उनको बतौर रहन के दे दी, तो ये एक के एक लाख के बदले भी पूरी गाड़ी रहन और दूसरे के भी एक लाख के बदले पूरी गाड़ी रहन है, ये नहीं कि आधी गाड़ी एक के पास रहन है और आधी गाड़ी एक के पास रहन है, नहीं। इसलिए क्योंकि रहन शुयू को कबूल नहीं करता। आप पढ़ चुके हैं शाय चीज किसे कहते हैं, जो फैली हुई है, जो अलग ना हो, उसको बतौर रहन के रखवाना सही नहीं। मेरी और जैद की जमीन मुश्तरका है, हम दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी, अभी तकसीम नहीं किया कि कौन सा आधा हिस्सा मेरा है और कौन सा आधा हिस्सा जैद का, जमीन के हर हर हिस्से में हम दोनों शरीक हैं। अब ये जमीन मैं कर्ज लेकर बतौर रहन के किसी के पास रखवा सकता हूं? आप पढ़ चुके हैं कि ये जमीन इसमें मेरा हिस्सा शाया है, फैला हुआ है, और जिसमें आपका हिस्सा फैला हुआ हो तो रहन के तौर पर आप नहीं रखवा सकते, क्योंकि मुर्तहिन ने उस पर कब्जा करना है और कब्जा, वो आपका हिस्सा अलग होगा तो उस पर कब्जा करेगा ना, जब आपका हिस्सा पूरी जमीन में फैला हुआ है, मसलन 10 कनाल जमीन है उसमें से 5 कनाल आपके बनते हैं लेकिन अभी तकसीम नहीं की, तो अब वो 5 कनाल पे कब्जा करना चाहता है बतौर रहन के, वो कर सकेगा नहीं, क्योंकि आपका हिस्सा अलहदा ही नहीं, वो तो मुशा है, फैला हुआ है। तो मालूम हुआ रहन शुयू को कबूल नहीं करता, क्योंकि शुयू होगा तो मुर्तहिन उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। तो यहां पर भी ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी आधी एक के पास रहन है, क्योंकि अगर आधी एक के पास रहन है तो वो सिर्फ आधी गाड़ी पर कब्जा कर सकता है नहीं, और दूसरे के पास आधी है तो वो भी कब्जा नहीं कर सकेगा। तो मालूम हुआ रहन शुयू को कबूल नहीं करता, वो अलग होना चाहिए, महूज होना चाहिए, तकसीम शुदा होना चाहिए ताकि मुर्तहिन उस पर पूरा कब्जा कर सके। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अयसीरु कुल्लुहु महबूसन बिदैन कुल्लि वाहिदीन, यानी वो सारी चीज जो है वो महबूस हो जाएगी उनमें से हर एक के दैन के बदले, यानी हर एक के दैन के बदले पूरी 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 चीज रहन होगी। ला अन्ना निस्फहु यकूनु रहनन इंद हाजा व निस्फहु इंद जालिक, ऐसा नहीं है कि इस चीज का निसफ तो एक के पास रहन हो। तर्जमा फिर सुन ले, ला अन्ना निस्फहु यकूनु रहनन इंदा हाजा व निस्फहु इंदा जालिक, ऐसा नहीं है कि उस चीज का निसफ तो रहन है इस एक आदमी के पास व निस्फहु इंदा जालिक और इसका आधा उस दूसरे आदमी के पास, ऐसा नहीं है। वहादा बिखिलाफिल हिबति मिन रजुलैनी, और ये बरखिलाफ है हिबा के मिन रजुलैनी दो आदमियों को। हैसु ला यसिहु इंदा अबी हनीफता, इस हैसियत से कि यह दुरुस्त नहीं इमाम साहब के नजदीक। भाई याद रखो, एक है रहन एक है हिबा। तवज्जो है, रहन शुयू को कबूल करता है, रहन शुयू को कबूल नहीं करता। वो महफूज होना चाहिए ताकि मुर्तहिन उस पर पूरा कब्जा कर ले, क्योंकि उसने उसको अपने पास रोक के रखना है ताकि कल इसके जरिए अपना दैन वसूल कर सके। तो रहन का हुक्म क्या है, उसको रोकना है, और रोकने के लिए जरूरी है कि पूरे पर कब्जा करे, और पूरे पर कब्जा तभी होगा जब इसमें किसी और का दखल और हिस्सा न हो। तो मालूम हुआ रहन शुयू को कबूल नहीं करता। और एक है हिबा, हिबा किसी को कोई चीज तोहफे के तौर पर देना। याद रखो हिबा शुयू को कबूल कर लेता है, हिबा क्या करता है शुयू को कबूल कर लेता है। मसलन एक ही गाड़ी मैं जैद और अमर को देता हूं कि गाड़ी आज से तुम दोनों की हो गई। इसका क्या मतलब, आधी जैद की हो गई आधी अमर की हो गई, वो चाहे इकट्ठे इस्तेमाल करें चाहे उसको बेचकर आधे आधे पैसे तकसीम कर लें। मैंने गाड़ी दोनों को दे दी, और हिबा क्या करता है शुयू को कबूल करता है। जब ये शुयू को कबूल करता है तो आधी गाड़ी एक की और आधी गाड़ी दूसरे की। और अगर हम कहें ये पूरी की पूरी गाड़ी जैद की भी और पूरी की पूरी गाड़ी अमर की भी, तो ये जायज नहीं, ये दुरुस्त नहीं है भाई, क्योंकि हिबा क्या कर लेता है शुयू को कबूल करता है। अब दूसरी सूरत बनाओ, मैं अपनी गाड़ी अमर और जैद को देता हूं, लेकिन क्या कहता हूं, मैं अपनी गाड़ी उनको देते हुए कहता हूं ये पूरी गाड़ी जैद आपकी भी है और ये पूरी गाड़ी अमर आपकी भी है, ये जायज नहीं। ये एक ही वक्त में पूरी चीज का मालिक, पूरी चीज एक को भी हिबा करना और दूसरे को भी हिबा करना जायज नहीं। क्यों नहीं जायज, क्योंकि एक चीज के एक ही वक्त में दो मालिक तो नहीं हो सकते, एक मालिक होगा और तो और ये हिबा है, हिबा शुयू को कबूल कर लेता है, तो यहां शुयू होना चाहिए। आप बगैर शुयू के दें दोनों को एक पूरी पूरी चीज का मालिक बनाए, ये सही नहीं है। तो मालूम हुआ हिबा और रहन एक दूसरे के मुखालिफ, रहन शुयू को कबूल नहीं करता और हिबा क्या कर लेता है शुयू को कबूल कर लेता है। लिहाजा एक ही चीज दो आदमियों के पास इकट्ठी पूरी की पूरी रहन रखवाना तो जायज है, लेकिन एक ही चीज पूरी की पूरी दो आदमियों को हिबा करना सही नहीं, बल्कि शुयू के साथ हिबा करेंगे। बात समझ में आ गई, ये मानना है। वहादा बिखिलाफिल हिबति मिन रजुलैनी, और ये बरखिलाफ हिबा के है मिन रजुलैनी दो आदमियों को। हैसु ला यसिहु इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इस हैसियत से कि ये सही नहीं है इमाम साहब के नजदीक। क्या माना सही नहीं है, यानी पूरी गाड़ी का मालिक जैद को भी आप बनाए हिबा में और पूरी गाड़ी का मालिक अमर को भी आप बनाए हिबा में, ये सही नहीं है किसके नजदीक, इमाम साहब के नजदीक। فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي بِخِلَافِ الْهِبَةِ, इसलिए क्योंकि पहला यानी जो रहन जो है ला يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي, वो वसफ بِالتَّجَزِّي यानी तकसीम को कबूल नहीं करता। بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِخِلَافِ हिबा के वो शुयू को या यूं कहें तकसीम को वो क्या कर लेता है, तकसीम को कबूल कर लेता है। ये और बेहतर लफ्ज आ गया, रहन तकसीम को कबूल नहीं करता कि एक ही चीज आधी एक के पास रहन हो और आधी दूसरी के पास नहीं, रहन तकसीम को कबूल नहीं करता, जबकि हिबा तकसीम को कबूल कर लेता है। लिहाजा गाड़ी दोनों को दी है तो आधी एक की हो जाएगी और आधी दूसरे की हो जाएगी। व इदा तहाया आफा कुल्लुन फी नौबती ही कल आदली फी हकिल आखर, तहायु का माना है इत्तेफाक करना, वही सूरत। दो आदमी आए थे, दोनों का मैंने एक एक लाख देना था, मैंने अपनी गाड़ी बतौरे रहन के उनको दे दी कि ये मेरी पूरी गाड़ी आप दोनों बतौरे रहन के रख लें। तो वो पूरी गाड़ी जैद के पास भी रहन और आमर के पास भी रहन उनके देन के बदले। अब इन दोनों ने आपस में इत्तेफाक कर लिया, गाड़ी मेरी ले गए और आपस में इत्तेफाक कर लिया कि यूं करना, एक हफ्ता गाड़ी आप अपने पास रखेंगे और फिर एक हफ्ता मैं रखूंगा, बारी बारी। सूरत समझ, इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल की बात नहीं हो रही, अपने पास रखने की बात हो रही है, क्योंकि रहन का इस्तेमाल सही नहीं। तो दोनों ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। तो अब जब गाड़ी जैद के पास है तो क्या आमर पर भी जमान आएगा? अगर वो गाड़ी हलाक हो गई तो रहन में जमान आता है, कितना जमान आता है? देन और रहन की कीमत में से जो अकाल हो वो जमान आता है। तो अब गाड़ी सिर्फ जैद के पास है और उसके पास मसलन चोरी हो गई, तो क्या अमर पर भी जमान आएगा? या सिर्फ अमर के पास थी गाड़ी और उसकी बारी में उससे चोरी हो गई, तो क्या उस पर भी जमान आएगा? कहते हैं हां, जमान दोनों पर ही आएगा, जमान दोनों पर आएगा, उनके देन के बकदर उन पर जमान आएगा भाई। और फिर भाई कैसे जमान आएगा, गाड़ी तो एक के पास थी। कहते हैं ये यूं समझे, जब जैद के पास थी गाड़ी तो जैद ने गोया अपने तौर पर भी उस पर कब्जा किया हुआ है, अपने देन के बदले में भी, और आमर के देन के बदले भी कब्जा किया हुआ है बतौर आदिल के। बतौर भाई आप पढ़ चुके हैं कि आप रहन मुर्तहिन के पास भी रखवा सकते हैं और किसी तीसरे आदिल आदमी के पास भी रखवा सकते हैं। मसलन आपने जैद से 10 लाख रुपए देन मांगा और उसने कहा कि मैं देन दूंगा लेकिन शर्त यह कि मेरे पास कोई अपनी गाड़ी रहन के तौर पर रखवाओ। आपने कहा गाड़ी तो ठीक है, मैं रहन रखवा देता हूं लेकिन आपके पास नहीं रखवाऊंगा, बल्कि मैं गाड़ी बकर के पास रखवा देता हूं। जैद ने कहा ठीक है, बकर के पास रखवा दें। तो बकर ऐसा आदमी है जिस पर आपका भी एतमाद है और जैद का भी एतमाद, इसको कहते हैं आदिल, यानी काबिल एतमाद आदमी। तो यहां पर भी जब दो आदमियों का देन है और वो आपस में बारियां मुकर्रर कर लेते हैं कि रहन को कुछ दिन एक रखेगा कुछ दूसरा रखेगा, तो हर एक जो कब्जा करेगा वो कब्जा उसका अपना भी है अपने तौर पर भी और अपने देन के एतबार से भी उस पर कब्जा, और दूसरे की तरफ से भी कब्जा है बतौर आदिल आदमी के, कि ये गोया उसके लिए क्या है, एक आदिल आदमी के तौर पर उसके रहन को अपने पास रखा हुआ है। सूरत समझ में आ गई, तो लिहाजा इसमें जमान आएगा। वह ईदा तहा या आ, और जब दोनों ने आपस में इतफाक कर लिया, कुल्लुन्फी नौबती ही कल आदली, तो उनमें से हर एक अपनी बारी में आदिल आदमी की तरह है, फी हक आखरी दूसरे के हक में, वलव हलका जमीना कुल्लुन हिस्सा तहू, और अगर वो रहन हलाक हो गया तो जामीन होगा इन दोनों में से हर एक हिस्सा तहू अपने हिस्से का, फइन इंदल हलाकि यसीरु कुल्लुन मुस्तौफियन हिस्सतहू। भाई ये क्या बात हुई, आपने कहा था पूरी गाड़ी जैद के पास भी बतौर रहन के है उसके देन के बदले, और आपने कहा था पूरी गाड़ी आमर के पास भी है बतौर रहन के, और जब अब बात आई जमान की तो जमान कह रहे हैं कि आदाद आएगा। कहते हैं भाई ये जो जमान आता है, ये गाड़ी पर कब्जा किस लिए कब्जा है? वसूली के लिए। किसके लिए? वसूली। तो रहन तो शुयो को और तकसीम को कबूल नहीं करता, लेकिन वसूली तो तकसीम को कबूल कर लेती है कि जो पैसे वसूल हों उसको क्या कर लिया जाए, आपस में तकसीम कर लिया जाए। तो यहां भी जब जमान दोनों पर आए तो दोनों पर क्या कर दिया जाएगा? तकसीम कर दिया जाएगा। मसलन देन कितना था? 2 लाख, और गाड़ी की कीमत थी 5 लाख। तो 5 लाख में से आप जानते हैं 2 लाख देन और रहन कितना? 5 लाख। तो अकल कितना है?
2 लाख।
अकल 2 लाख, तो 2 लाख जमान आएगा, 2 लाख जमान आएगा, और बाकी 3 लाख बतौर अमानत के जाया हो गए, तो दोनों का देन साकित हो जाएगा। सूरत समझ में आ, और सूरत बना लो, मसलन जैद का देन है 4 लाख और अमर का देन है 6 लाख, 6 लाख और गाड़ी है 5 लाख की, तो 5 लाख की गाड़ी इनके पास हलाक हो गई, गुम हो गई। अब इनका हर एक पर जमान आएगा उनके हिस्सों के बकदर। मजमुआए देन कितना? 1 4 लाख, 1 का 6 लाख, मजमुआए देन 10 लाख, और गाड़ी कितने की? 5 लाख। अकल कितना? 5। तो 5 लाख जमान आ गया दोनों पर, तो 5 लाख देन में से साकित हो जाएंगे और बाकी 5 लाख रह जाएंगे। अब इस 5 लाख जो देन रह गया, कितना साकित हुआ किसका और कितना किसका रह गया बाकी? तो देखो हिस्से को देख लो, हिस्से को देख लो, चार और छह लाख कितने हो गए, 10 लाख, 10 हिस्से गोया देन था, 10 हिस्से। तो इस गाड़ी के भी, गाड़ी थी कितने की, 5 लाख, इसके भी 10 हिस्से कर लो, 10 हिस्से, तो एक हिस्से में कितना आया, 50,000। तो 10 में से जो कुल देन था, 10 में से कितने हिस्से थे जैद के, 4, और 6 हिस्से किसके थे, आमर के थे, 6 लाख। तो लिहाजा इस 5 लाख जो जमान आया, इसके भी 10 हिस्से किए, और एक में कितना आया, 50,000, एक, और इस 50,000 में से 4 हिस्से जमान किस पर आएगा, जैद पर, और 6 हिस्से जमान किस पर आएगा, अमर पर। तो 2 लाख जमान आ गया जैद पर, और 3 लाख जमान आ गया अमर पर। तो अमर के 2 लाख देन में से साकित हो गए। अब पहले 4 वसूल करना था, 2 वसूल कर लिए, 2 रह गए, और आमर ने 6 लाख वसूल करना था, 6 में से 3 वसूल कर लिए, साकित हो गए, और 3 रह गए वो वसूल करेगा। सूरत समझ में आ गई। आप कहेंगे ये इस्तीफा का जिक्र यहां कहां से आ गया, भाई देखो ना, रहन पर जो कब्जा होता है वो किस लिए होता है, वसूली के लिए होता है। रहन पर जो ये कब्जा होता है, ये कौन सा कब्जा होता है, वसूली वाला, इस्तीफा के लिए, वसूली के लिए कब्जा होता है। तो जब रहन हलाक हो गया तो हर एक अपने हिस्से को वसूल करने वाला हुआ, और वसूली तो उन चीजों में से है जो तकसीम को कबूल करती है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फइन इंदल हलाकी यसीरु कुल्लुन मुस्तौफियन हिस्सतहु, इसलिए क्योंकि हलाक होने के वक्त हो जाएगा उनमें से हर एक मुस्तौफियन हिस्सतहु, अपने हिस्से को वसूल करने वाला, देन में से अपने हिस्से को उतना ही वसूल करने वाला हो गया। अवल इस्तीफा उमिम्मा यतजज़ाउ, और इस्तीफा उन चीजों में से है जो तकसीम को कबूल कर लेता है। फइन क़ज़ा दैन अहदिहिमा फकुल्लुहु रहनुन लिल आखर, तीसरी सूरत भाई, इन दोनों में से एक को मैंने देन अदा कर दिया तो ये पूरी गाड़ी अब दूसरे के पास रहन के तौर पर होगी। फइन क़ज़ा दैन अहदिहिमा, पस अगर अदा कर दिया इन दोनों में से एक के देन को, फकुल्लुहु रहनुन लिल आखरी, तो वो सारी की सारी चीज जो है वो रहन हो जाएगी दूसरे के पास। लिमा मर्रा अन्न कुल्लहु रहनुन इंदा कुल्ली वाहिदिन, बवजह उसके जो पहले बात गुजर चुकी है कि ये सारी गाड़ी रहन है दोनों में से हर एक के पास, ये सारी चीज दोनों में से हर एक के पास रहन है। तो जब एक का देन पूरा अदा कर दिया तो अब एक तो अभी भी बाकी है, तो अब वो पूरी गाड़ी उसके पास बतौर रहन के होगी। व इन रहना रजुलन रहनन बिदैन अलैहिमा सहा बिकुल्ली दैन व युमसिकुहु इला कब्ज़िल कुल्ली। अब दूसरी सूरत बनाओ, जैद और अमर ने मेरा देन देना है, दोनों ने, पहले क्या था, मैंने उनका देन देना था, फिर मैंने अपनी गाड़ी रखवाई, अब मदयून दो हो गए, तो जैद ने भी मेरा 1 लाख देना है और अमर ने भी मेरा 1 लाख रुपया देना है। मैं इन दोनों के पास चला गया कि मेरे पास कोई चीज कि मेरा देन मुझे अदा करो। उन दोनों का एक मुश्तरका गुलाम था, आधा जैद का था और आधा अमर का, उन्होंने वो मुश्तरका गुलाम मेरे पास बतौर रहन के रखवा दिया। अब देखो इस गुलाम में तो शुयू है, आधा किसका है, जैद का, और आधा किसका है, अमर का है। तो क्या इसको रहन रखवाना जायज है, हालांकि आपने हमें जाब्ता बतलाया था कि रहन में शुयू जायज नहीं। कहते नहीं, ये जायज है, यहां पर यह सूरत जायज है, क्योंकि रहन में मकसद होता है कि मुर्तहीन पूरे रहन पर कब्जा करे, और यहां पर भी पूरे रहन पर वो कब्जा करेगा, क्योंकि जिन जिन का हिस्सा है इस रहन में वो उन सब ने देन देना है, उन सब ने। हां, इस गुलाम में अगर किसी तीसरे ऐसे आदमी का भी हिस्सा होता जिस पर देन नहीं था, फिर कब्जा नहीं हो सकता था, क्योंकि फिर तो सिर्फ मदयून के हिस्से पर कब्जा हो और वो गैर मदयून के हिस्से पर कब्जा ना हो, ये हो ही नहीं सकता भाई। बात समझ में आ गई। तो यहां ये ठीक है, वो दोनों का गुलाम है, दोनों पर कर्जा है, तो पूरे गुलाम पर मुर्तहिन कब्जा कर लेगा। व इन रहना, देखा तस्निया का सीगा है, और अगर उन दोनों आदमियों ने रहन रखवाया, रजुलन किसी आदमी के पास, रहनन क्या रखवाया, रहन व इन रहना रजुलन रहनन, अगर उन दोनों आदमियों ने किसी आदमी के पास रहन रखवाया, बिदैन इन अलैहिमा, ऐसे दैन के बदले अलैहिमा जो उन दोनों पर है, सह बिकुल्लि दैनी, तो ये सही है रहन रखवाना बिकुल्लि दैनी पूरे दैन के बदले, तो ये सही हो जाएगा पूरे दैन के बदले। वह युमसिकुहु इला कब्ज़िल कुल्ली, और वो इस रहन को मुर्तहिन रोकेगा यहां तक कि वो पूरे देन पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। वही नमासा हहाजा लिअन्ना कब्जा रहनी वकाफिल कुल्ली बिला शुयूइन, भाई कहते हैं ये सही है इसलिए क्योंकि जो रहन पर कब्जा वाके हुआ वो पूरे में हुआ, रहन पर कब्जा पूरे में हुआ, बिला शुयूइन बगैर शुयू। मैंने बतलाया कि अगर इस गुलाम में किसी गैर मदियून का भी हिस्सा होता और उसकी चीज पर, तो कोई आदमी दूसरे की चीज पर बिला वजह तो कब्जा नहीं कर सकता, तो फिर इसका रहन रखवाना ठीक नहीं था। और यहां तो जितने भी हिस्से गुलाम में हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने आपका देन देना है, तो पूरे गुलाम पर आपने कब्जा कर लिया, अब पूरा गुलाम है आपके कब्जे में, ऐसा नहीं कि कुछ पर कब्जा कहें कुछ पर कब्जा न कहें, तो शुयू है ही नहीं, तो कब्जा बगैर शुयू के पाया गया। सूरत समझ में आ, लिअन्न कब्ज़ा रहनी वकाफिल कुल्ली बिला शुयूइन, इसलिए क्योंकि रहन पर जो कब्जा हुआ वो वाक़े हो गया पूरे पर बगैर शुयू के। वबतल हुज्जत कुल्लि मिन्हुमा अन्नहु रहन हादा मिन्हु वकब्ज़हु, हादिही मसअलतुन मुबतदअतुन ला ताअल्लुक लहा बिमा सबक, ये अलग मसला बयान कर रहे हैं भाई, अलग मसला, मसला ये कि दो आदमियों ने जैद पर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, काजी के पास आ गए, एक शख्स कहता है काजी साहब ये जो जैद का गुलाम है इसके पास, ये इस जैद ने मेरा 10 लाख रुपया देन देना था और इसने ये पूरा गुलाम मेरे पास रहन रखवाया था और मैंने इस पर कब्जा भी कर लिया था, अब ये मुझे वापस दिला दें, इसने ले लिया है, तवज्जो है, दो आदमी आए दोनों में से हर एक का यह दावा है, पहला आदमी भी ये कहता है कि जो काजी साहब ये जो जैद का गुलाम है इसके पास, ये गुलाम इसने मेरा 10 लाख रुपए, इस जैद ने मेरा देन देना था, इसने अपना ये गुलाम मेरे पास बतौर रहन के रखवाया था और मैंने इस गुलाम पर कब्जा भी कर लिया था, और इस पर वो दो गवाह भी पेश कर देता है, वो भी गवाही दे देते हैं कि ऐसा ही था। दूसरा आदमी भी यही कहता है कि काजी साहब ये जो जैद के पास गुलाम है, इस जैद ने मेरा 5 लाख रुपया देन देना था, इसने ये पूरा गुलाम मेरे पास बतौर रहन के रखवाया था और मैंने इस पर गुलाम पर कब्जा भी कर लिया था, और वो भी दो गवाह पेश कर देता है, दो गवाह पेश कर देता है, तो कहते हैं इस सूरत में तरजीह की कोई सूरत नहीं, तरजीह की तो दोनों का दावा बातिल हो जाएगा, दोनों का दावा बातिल हो जाएगा। भाई क्यों बातिल क्यों होगा, कहते हैं इसलिए कि यहां तीन सूरतें बनती हैं और तीनों में से किसी एक पर भी अमल नहीं हो सकता, तीन सूरतें हैं तीनों में से किसी एक पर भी अमल नहीं हो सकता। एक सूरत ये कि काजी एक आदमी के लिए भी फैसला कर दे पूरा गुलाम दे दो, और दूसरे के लिए भी फैसला कर दे कि इसको भी पूरा गुलाम बतौर रहन के अब हवाले कर दो, भाई एक ही गुलाम एक के पास बतौर रहन की हो सकता है ना, दोनों के पास तो अलहदा अलहदा सूरत समझ में आ रही, दोनों के लिए यही फैसला कर दे कि ये गुलाम जो है जो जैद का है ये इस पहले आदमी के हवाले कर दिया जाए, ये इस पर पूरे पर कब्जा कर ले, और दूसरे के लिए भी ये फैसला कर दिया जाए कि ये गुलाम इसके हवाले कर दिया जाए, ये इस पर पूरा कब्जा कर ले, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि गुलाम एक है, या तो एक के कब्जे में दिया जा सकता है या दोनों में से हर एक के लिए भी फैसला नहीं हो सकता, और दोनों में से किसी एक के लिए भी नहीं कर सकता कि एक को दे दे दूसरे को ना दे, क्योंकि तरजीह की कोई सूरत ही नहीं है, या तो तारीख वगैरह होती कि फलां कहे मैंने, वो तारीखें भी साथ जिक्र कर दें फिर तो ठीक है, जिसकी तारीख मुकदम मालूम हो उसका हक मुकदम है लिहाजा उसके हक में फैसला कर दिया, तारीख भी कोई नहीं है कि किस तारीख को दिया था किस वक्त रखवाया था, तो दोनों में से हर एक के लिए भी फैसला नहीं हो सकता क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, दोनों में से एक तरजीह दे दी जाए उसकी भी कोई सूरत नहीं है, और तीसरी सूरत यह है कि आधा गुलाम एक के पास रहन हो जाए और आधा गुलाम एक के पास रहन हो जाए, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि रहन शुयू को कबूल नहीं करता। और नीज ये तो उनके दावे की भी खिलाफ है, आप उनको आधा गुलाम दे रहे हैं हालांकि वो तो पूरे का दावा लेकर आए हैं। तो लिहाजा दोनों के दावे बातिल हो जाएंगे, दोनों के दावे बातिल हो जाएंगे। देखिए कहते हैं वह बताला हुज्जतु कुल्ल मिन्हुमा, और बातिल हो जाएगी हुज्जत, कहते हैं दलील और गवाही को, गवाही उनमें से हर एक की, दो गवाह लेकर आए हैं ना, दो दो गवाह, दोनों में से हर एक की हुज्जत यानी गवाही जो है वो बातिल हो जाएगी। किस बात पर गवाही? कि अन्नहु रहना हाजा, कि इस शख्स ने ये चीज, ये गुलाम रहन रखवाया था, मिन्हु उसके पास। वो एक आदमी कहता है, क्या कहता है कि हाजा से मुराद मसलन मुद्दा अलैह है, और मिन्हु वही मुद्दाई है जो दावा कर रहा है कि ये जो मुद्दा अलैह है, इसने ये गुलाम रहन, अन्नहु रहना हाजा, इसने ये गुलाम, ये चीज रहन रखवाई थी, मिन्हु किसके पास? मेरे पास, मेरे पास। वह कब्जा हु, और मैंने इस पर क्या कर लिया था? मैंने इस गुलाम पर कब्जा भी कर लिया था। बात समझ में आ? तो ये वाली जो हुज्जत है दोनों में से हर एक, ये हुज्जत बातिल हो जाएगी। इस पर जो गवाही पेश की वो गवाही, फिर सुनो तर्जमा, वब्बा तला हुज्जत कुल्ल मिन्हुमा, और बातिल हो जाएगी दो मुद्दाइयों में से हर एक की ये हुज्जत कि अन्नहु रहना हादा मिन्हु व कबजहु, कि इस मुद्दाले ने ये चीज जो है उसके पास रहन रखवाई थी और उसने इस पर कब्जा भी कर लिया था। हाज़िही मसअलतुन मुब्तदाअतुन ला ताअल्लुका लहा बिमा सबका, कहते हैं ये नया मसला है जिसका मा कबल से ताल्लुक नहीं है। वसूरतुहा, और सूरत उसकी यह है कि अन्न कुल्ल वाहिदिन मिनर रजुलैन दाअ, के दावा कर दिया दो आदमियों में से हर एक ने कि अन्न ज़ैदन रहना हाज़ल अब्द मिन हाज़ल मुद्दईबई, उसने रहन रखवाया इस मुद्दई के पास। वसल्लमहु इलैही, और उसने इसको उसके सुपुर्द भी कर दिया था। व अकाम अला ज़ालिका बय्यनतन, और उसने उस पर बय्यना भी कायम कर दी। तो तब तुलु हुज्जतु कुल्लि वाहिदिन, तो बातिल हो जाएगी हर एक की बय्यना। लिअन्नहु ला युम्किनुल क़ज़ाउ लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि मुमकिन नहीं है कि फैसला कर दिया जाए दोनों में से हर एक के लिए कि एक इसको भी पूरा ये वाला गुलाम दो और उसको भी दे दो, और एक गुलाम तो एक वक्त में एक के कब्जे में दिया जा सकता है, दोनों के कब्जे में तो नहीं दिया जा सकता। वला लि अहदिहिमा, और यह भी मुमकिन नहीं है कि उन दोनों में से किसी एक के लिए फैसला कर दिया जाए। लि आदमी औलवियतिही, बवजह उसके आदम औले, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी से औला नहीं भाई ज्यादा कि उसको तरजीह दे दी जाए। वला इलल कजा इली कुल्लिन बिन निस्फ लिशुयू, और यह भी मुमकिन नहीं है कि फैसला कर दिया जाए। लिकुल्लिन हर एक के लिए, बिन निस्फ कितने का? निसफ का। लिशुयू, क्योंकि सूरत में क्या लाजिम आएगा? शुयू, और रहन तो शुयू को कबूल नहीं करता। और मैंने बताया नीज ये उनके दावे के भी खिलाफ हो जाएगा, वो तो कुल का दावा कर रहे हैं, निसफ का दावा नहीं कर रहे। वलाउ मातर राहिनुहु वर रहनुमाहुमा, अब दूसरी सूरत भाई बिल्कुल यही सूरत है, दो आदमियों ने यही दावा किया और गवाह पेश कर दिए, लेकिन वो जो मुद्दाले है वो मर चुका है, वो मर चुका है। अब इन्होंने दावा किया कि जो जैद मर गया, इसका ये वाला गुलाम, ये इसने हमसे देन लिया था, और ये गुलाम एक कहता है इसने मेरे पास रखवाया था और मैंने इस पर कब्जा भी किया था और दो गवाह भी पेश कर दिए। दूसरा कहता है यही गुलाम इसने मेरे देन के बदले मेरे पास रखवाया था और मैंने उस पर कब्जा भी कर लिया था और उसने भी दो गवाह पेश कर दिए। अब ये कब मुकदमा आया? वो जो मदयून है वो मर चुका है। कहते हैं इस सूरत में काजी आधे आधे गुलाम को दोनों को बतौर रहन के दे देगा, आधे गुलाम को कि गुलाम उन दोनों के हवाले करेगा और कहेगा आधा तुम्हारे पास बतौर रहन के है और आधा तुम्हारे पास बतौर रहन के है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा, भाई रहन तो शुयू को कबूल ही नहीं करता, तो फिर कैसे एक आधे गुलाम पर कैसे कब्जा करेंगे? तो जवाब आपको बतलाएंगे कि हां भाई कियास तो यही तकाजा करता है, कियास तो यही तकाजा करता है कि ये रहन शियो को कबूल नहीं करता, लिहाजा इन दोनों के पास इस चीज को बतौर रहन के देना दुरुस्त नहीं। लेकिन इस्तेहसानन इजाजत दी गई कि इस्तेहसान की वजह यह है कि इधर देखिए भाई कि रहन का हुक्म जो है वो हब्स है, यानी उसको रोकना। मुर्तहिन क्या करता है, रहन को अपने पास रोक लेता है, और रोकना शुयोह को कबूल नहीं करता। जब कोई चीज आपने अपने पास रोकनी है तो पूरी पर कब्जा करेंगे तभी रोक सकते हैं, पूरी पर कब्जा ना हो तो रोक नहीं सकते। तो रहन का एक हुक्म है हब्स, यानी उस चीज को अपने पास रोकना, और वो शुयोह को कबूल नहीं करता। और ये जिंदगी में था, जब तक राहिन राहिन जो है वो जिंदा था तो मुर्तहिन का हक है कि वो रहन को क्या करे, अपने पास रोक ले। लेकिन जब राहिन मर चुका है, अब जो रहन का हुक्म है वो इस्तीफा का है, इसके जरिए अपने देन को वसूल करना है। अब रहन किस लिए दिया जा रहा है, रोकने के लिए या वसूली के लिए? अब वसूली के लिए है, क्योंकि देन वसूल करना है भाई। तो लिहाजा अब जो रहन दिया जा रहा है, अब रोकने के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि वसूली के लिए, कि इसको बेचो और बेचकर अपने अपने देन को वसूल कर लो। और वसूली, ये तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि वसूली वो तकसीम को और शुयों को कबूल कर लेती है। गुलाम को बेच देंगे, बेचकर उसके पैसे आ जाएंगे, और वो आधे पैसे एक ले लेगा और आधे पैसे दूसरा ले लेगा। तो देखा, हब्स में तो शुयों मुमकिन नहीं था, लेकिन वसूली में तो तकसीम और शुयों मुमकिन है। और इस वक्त जो रहन हवाले किया जा रहा है वो हब्स के लिए नहीं है, बल्कि वसूली के लिए है, इसलिए ये जायज। सूरत समझ में आ गई? अब जब वो मुर्तहिन मर चुका है तो भाई अब रहन का हुक्म हबस नहीं है, अब उसको रहन को अपने पास रोकने का कोई और मकसद नहीं है, बल्कि अब किसी और से देन मिलेगा नहीं, मदयून तो मर चुका है। लिहाजा अब जो रहन का फैसला दोनों के लिए किया गया, वो इसलिए नहीं किया कि इस चीज को बतौर रहन के अपने पास रोक लें, बल्कि अब तो मदयून मर चुका है, अब इस रहन को बेचा जाए और उसके जरिए वसूली की जाए। तो मदयून के मरने के बाद अब रहन जो है उसको रोकने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि अब वहां इस्तीफा मकसूद है, इस्तीफा। और इस्तीफा तो शुयू को कबूल करता है, तकसीम को कबूल करता है, इसलिए दोनों के लिए फैसला कर दिया गया आधे आधे रहन का, यानी ये इसको बेचें और इसके जरिए अपने देन को वसूल करें। बात समझ में आ गई? कहते हैं वलो माता राहिनुहु, और अगर उसका राहिन मर गया उस चीज का, रहनु माहुमा, और हाल यह है कि रहन उन दोनों के पास है, रहन उन दोनों के
पास है।
कब्जे में है। तवज्जो है, याद रखो, रहन उन दोनों के कब्जे में होना चाहिए। अगर एक के कब्जे में है तो उसको तरजीह होगी, सिर्फ उसके हक में फैसला करेंगे। बात समझ में आ गई? दोनों का कब्जा, या चाहे तो दोनों में से किसी का भी कब्जा ना हो फिर भी ठीक है, लेकिन एक के कब्जे में कम से कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं वलो मातर राहिनुहु वर रहनु माहुमा, और मगर वो राहिन मर गया और रहन जो है वो उन दोनों के कब्जे में है, फबरहना कुल्लुन जालिका, तो फिर बय्यना कायम कर दी हर एक ने यही वली, तो कान मा कुल्लिन निस्फुहु रहनन, तो उनमें से हर एक के पास इस गुलाम का आधा रहन के तौर पर होगा, भी हक ही उसके हक के बदले। हादा कौल अबी हनीफा व मोहम्मद रहिमहुमल्लाहु तआला वहु इस्तेहसान, और ये कौल है तरफेन रहिमहुमल्लाह का, और ये इस्तेहसान है। व इंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह हादा बातिल वहु अल्कियास, इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला फरमाते हैं कि ये बातिल है, एक ही चीज दोनों के पास आधी आधी रहन हो जाए, रहन तो शुयू को कबूल नहीं करता। तो इमाम यूसुफ रहमल्ला फरमाते हैं ये बातिल है, वह हुवल कियास, और यही कियास है, कमा फिल हयात, जैसे किस में था, उसकी जैसे राहिन की जिंदगी में था। वजहुल इस्तेहसान, कहते हैं इस्तेहसान की वजह यह है कि अन हुक्महु फिल हयाति हुवल हब्सु, कि रहन का हुक्म जो है उस राहिन की जिंदगी में वह हब्स था, कि उसको रोकना था। वह शुयू या जुर्रुहू, और शुयू जो है इस रोकने को नुकसान देता है, शुयू हो तो फिर हब्स नहीं हो सकता। वह बाद अल ममातिल इस्तीफा उबिल बैफी दैन, और रहन का हुक्म राहिन के मरने के बाद अल इस्तीफा वसूली है, बिल बैई किसके जरिए, बै के जरिए वसूली है, फिद दैन किस में, देन में। वह शुयू ला यजुर्रुहू, और वसूली जो है शुयू उसको नुकसान, वह शुयू ला यजुर्रुहु, और शुयू जो है वो वसूली को नुकसान नहीं देता। मसला समझ में आ गया? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।